मसीह की कलीसिया का दूसरा भाग के बारे में हमारे प्यारे ब्रदर जो बेंगलोर से आए हैं खुशीनो उनसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारे भाइयों में से ब्रदर विलियम को बोलेंगे कि आज की समिति के लिए प्रार्थना करें।
पवित्र पिता, स्वर्गीय पिता, महान पिता, महान उजाले विच रहने वाले पिता, एक बार फिर आपको लेके यीशु मसीह के नाम से मौका दिया है कि हम आपकी दया आपकी कृपा के सिंहासन के सामने आपका धन्यवाद कर सकें। सच्चे पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब आपके नाम पर प्रकट हुए हैं। जो भी आज आपका वचन हो हमारी जिंदगियों के लिए बढ़ोतरी वाला हो पिता परमेश्वर। सच्चे पिता परमेश्वर, लाख लाख शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर तेरे दासों के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे दास दूर से आए हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। शुक्र करता परमेश्वर कि आपने सही सलामत वापस फिर मिला दिया, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर। अदा करते हैं पिता परमेश्वर, और जितने भी भाई आ रहे हैं पिता परमेश्वर उनको सही जगह पर पहुँचाएँ, ताकि सब हम इकट्ठे होकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। लाख लाख शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
तो हम हमारी क्लास की शुरुआत करेंगे। ब्रदर को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली क्लास का थोड़ा ओवरव्यू बता दे ताकि वो टच बना रहे। तो हम ब्रदर को बोलेंगे क्लास के लिए।
तो मसीह यीशु के बहुत प्यारे जलंधर के भक्तों, आपको मिलने के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे को दोबारा मौका दिया है, पहला हम याद करते हैं ये और ये आशीर्वाद। और हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पहला पिता परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये मौका में हम बहुत शुक्रिया अदा भी ये है कि हम जानते हैं कि 2 महीने पहले आपके बीच में हम आने को परमेश्वर मौका दिया, और 2 महीने के बाद जब मैं अभी आ रहा हूँ आपके अंदर तरक्की भी हो गई है, बहुत सारे परमेश्वर के पवित्र वचन, परमेश्वर के पवित्र सच्चाई और उजाला आपके ऊपर पड़े हुए हैं। जितना उजाला पड़ता है उतना ही अंधेरा भी निकल जाता है। और ये मौका जो परमेश्वर दिया आपके सामने आके और सेवा करने के लिए, ये भी बहुत ही सुनहरा मौका है। और दक्षिण भारत में जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से सारे भक्तों और विश्वासी अपने प्यार और मोहब्बत मसीह के अंदर आपको भेजा गया है। तो जैसा है हमारा ब्रदर मोनू ने बताया, आज तो हम देखने वाला पाठ है प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया का पढ़ाई का दूसरा भाग। ये पहला भाग में हमने शुरू किया और हमने वो सवाल देखा कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया कौन सा कलीसिया है। आजकल बहुत सारा कलीसिया है, ये बहुत सारा कलीसियाओं जो हमारे बीच में हैं, उलझन भी पैदा होता है कि कौन सा कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, क्योंकि एक कलीसिया बोलता है हाँ सच्चा कलीसिया है, वो नहीं है। तो सभी कलीसिया के बीच में प्रतियोगिता हो रहा है। तो अभी कौन सा कलीसिया सच्चा कलीसिया, क्या सब मिलजुल के प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है? कभी कभी ऐसा सोच भी हम सोचते हैं, लेकिन हम इस सवाल का जवाब, सही जवाब और बराबर जवाब तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से हम मिल सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में ढूंढते हुए हम जाके देखा कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के बारे में वचन कैसा है। तभी तो हमने लिया वो वचन जो आपको याद होगा, जहां से हमने ये बात शुरू की, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 14वां वचन, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और 14वां वचन, रेवलेशन 17:14, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 14वां वचन।
वे मेमने से लड़ेंगे और मेमने उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे।
देखो ये वचन प्रकाशित वाक्य का है, प्रकाशित वाक्य का किताब जो है बहुत ही मुश्किल किताब है। बहुत सारे मसीहों तो प्रकाशित वाक्य से डरता है, लेकिन आज तो हम प्रकाशित वाक्य के मतलब देखने के लिए हम नहीं जा रहे, बल्कि हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य का एक ये वचन यहाँ मेमना के बारे में बताता है। मेमना तो जानते हैं ये एक चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन यहाँ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ एक झुंड है जिनसे कहता है वो बुलायो, वो चुने हुए और वो विश्वासी है। मेरे एक बात कहना है कि यहाँ तो हिंदी का अनुवाद विश्वासी बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में देखा जाए ये विश्वासी नहीं वफादार, कॉल्ड चोजन फेथफुल कह सकता है ना, तो बुलाए हुए चुने हुए वफादार वफादार। तो ये मतलब क्या है, ये तीन शब्द ये झुंड के बारे में कह दिया गया है, इसका मतलब है ये है तीन कदम जो हम पार करना है मसीह के जिंदगी में, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में महिमा में जाके जुड़ना है। कोई आसान बात नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, हम काबिल होना है। आपको जानता है हमारा का सबसे बड़ा आदमी है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, क्या आप और हम मनमोहन सिंह जी के पास जा सकते हैं? नहीं, उनका सुरक्षा है, उनका बल है, और अगर हमारे को अगर वो हमको पहचानता है और अगर वो हमारे को बुलाता है तब ही सही समय में चुने हुए समय में जाके इनसे मिल सकता है, और वो भी थोड़े समय के लिए। क्या हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही हम मिल सकता है, ऐसे ही उनके पास जा सकता है? कांपेंगे अगर प्रभु यीशु मसीह देखे जाए तो कांपेंगे, लेकिन बुलावा है। इसको कहता है प्रभु यीशु मसीह मेमना का शादी, मेमना तो दुल्हा और उनके पास जाएगा दुल्हन, वही है कलीसिया, वही है सच्चा कलीसिया। लेकिन इस कलीसिया का बढ़ोतरी, इस कलीसिया का चुनाव सिर्फ वचन में बताता है। तीन शब्द बुलाए, चुने हुए और वफादार, ये तीन मंजिल को हम पार करना है, तीन कदम को हम पार करना है। पिछले क्लास में ब्रदर जी ने आपके बीच में शुरू किया पहला दो कदम, बुलाए हुए और चुने हुए। मत्ती में 22वां अध्याय 14वां वचन में बताता है इसके बारे में, लेकिन अगर इस बात को हम नहीं जानते थे तो हम क्या क्या समझ लेते इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी हम देखें मत्ती 22वां अध्याय 14वां वचन, मत्ती 22वां अध्याय 14वां वचन,
क्यों जो सदे हुए था बहुत हम पर चुने हुए थोड़े,
पढ़ ली,
क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं।
पहला दो कदम के बारे में ये वचन बताता है कि बुलाए हुए स्थान में बहुत है लेकिन चुने हुए स्थान में कम। ये बुलाए हुए और ये चुने हुए कौन है? बुलाए हुए का मतलब क्या है, किधर से बुलाना है ना, तो किधर से बुलाते हैं, दुनिया से बुलाते हैं। दुनिया में क्या स्थिति है, अविश्वास स्थिति है, अविश्वास स्थिति से ही बुलाता है विश्वास के अंदर, समझ गया। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश पहला प्रकट होता है और हम समझता है और पहचानता है कौन है प्रभु यीशु मसीह, तभी हमको मौका मिलता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास दिखाना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच्चाई सुनते हैं कि वो दुनिया का चुड़ौती करने वाला है, बताता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर। हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह आया और कलवारी के क्रूस पे सारा दुनिया के पापों के लिए मरा, हमारा चुड़ौती करने वाला। आपको है वो चुड़ौती का सच्चाई भी, एक के बदले एक, पहला आदमी परमेश्वर सृष्टि की जो परिपूर्णता आदम, उन्होंने गिरा पाप में और उनके ऊपर आया पाप का जो मजदूरी मौत, और उस स्थिति में सारा खानदान पैदा हुआ पाप में और मौत का मजदूरी के साथ साथ। अभी अगर सारा मनुष्य जाति का अगर बचाव होना है तो बचाना है मनुष्य जाति का बड़े बड़े बाप का आदम, इसलिए हिंदी में हम सब आदमी आदमी और आप औरत अव्वा से आए हुए वंश और हम आदम से आए हुए वंश। तो ये बात परमेश्वर ने किया था अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बेच के, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के यहाँ मामस में आया, एक मनुष्य बना, परिपूर्ण मनुष्य बना जैसा था हमारा बड़े बाप आदम, और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा चुड़ौती वाला बना। अभी पहला मंजिल है विश्वासी, तो विश्वासी को बुलाए हुए कहता है, दुनिया के अंधेरा से उनको एक बुलावा मिलता है विश्वास के अंदर आने के लिए। विश्वास के अंदर आ जाता है क्योंकि वो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह से, उनको मिलता है एक बेंट पर, एक स्वर्गीय बेंट, और वो है धार्मिकता, उसके पापों का क्षमा, उसके पापों का क्षमा मिलता है और वो धर्मी बन जाता है। जैसे आपको याद है हमने पढ़ा है रोमियो की किताब पांचवां अध्याय पहला वचन, रोमियो पहला अध्याय सॉरी पांचवां अध्याय पहला वचन, रोमन 5:1 रोमियो पांचवां अध्याय पहला वचन,
अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते।
देखो हम धर्मी ठहरा कब, जब हमारे पापों का क्षमा मिला, और वो पापों का क्षमा कैसा मिला, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल लहू के जरिए से। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर किया, हम प्रभु यीशु मसीह से और पिता परमेश्वर से मिलता है ये स्वर्गीय पुरस्कार, स्वर्गीय बैंक। अभी अगले बात क्या होता है कि इस मंजिल में, मतलब बुलाए हुए मंजिल में, ये विश्वासियों के पास ज्ञान में कुछ नहीं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में कुछ नहीं, सिर्फ शुरुआत में खड़े हैं, हाथ में देते हैं ये परमेश्वर का वचन, देखता है बड़ा किताब, नहीं जानता उस वक्त भी इसमें 67 किताब अंदर है, 67 किताबों का एक किताब, इसका मतलब क्या है, इसका जानकारी क्या है, उस वक्त नहीं जानता। इसलिए उस वक्त उनको कहते हैं परमेश्वर के, उनको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह में बच्चे हैं, बेब्स इन क्राइस्ट, पहला पत्र 3:2।
तो 66
बोला था
ना
जी,
बुक 6
में आप 66
पहला पत्र
66 स्लिप ऑफ द टंग, थैंक यू, करेक्शन करना है 66 है, तो पहला पत्र 2:2 66
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
तो आत्मिक जीवन में नए जन्मे हुए बच्चे हैं, आत्मिक जानकारी उनके पास नहीं है उस वक्त, आत्मिक जानकारी उसको मिलता है पहले बार परमेश्वर के वचन उसको सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के गहरा ज्ञान उनके पास नहीं होते हैं, तो नए जन्मा हुए बच्चे हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसे स्थिति से बढ़ना है बढ़ते बढ़ते परमेश्वर क्या मांगता है इन विश्वासियों से, ये वचन हम पढ़ते हैं याकूब 2:17 James 2:17 17
वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है।
तो वचन कहता है कि ये विश्वास के साथ साथ कर्म होना चाहिए। आप भी याद होगा कि पिछले क्लास में आपने सोचा होगा ये कर्म क्या है, बोलता है कि आप मदद करना है गरीबों को, आप अस्पताल खोलना है, आप स्कूलों खोलना है, और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम भी खोलना है, जैसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे धर्म कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसे अच्छे अच्छे काम, सामाजिक काम करनी है। लेकिन क्या ये वो कर्म जो ये वचन बताता है? इसका जवाब है कि ये कर्म जो हम बताया, ये सब अच्छा कर्म है नहीं है, लेकिन ये वचन के अनुसार कर्म ये नहीं है, ये संसारिक का कर्म है। अभी हम वचन में देखते हैं कि कौन सा कर्म परमेश्वर ढूंढते हैं विश्वासी के अंदर। वो है योहन्ना चताध्याय, योहन्ना चताध्याय 29वां वचन, जॉन 6:29। बोलो छः उनतीस।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो।
आप सोचते होंगे वैसे ही हम तो विश्वास ही कर रहे हैं ना उनके ऊपर, और भी विश्वास करना करेंगे, जरूर करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन ये शब्द विश्वास जो दिया गया उधर ना, ये एक अच्छा अनुवाद नहीं है, क्योंकि ये विश्वास जो वहां आता है ना, अंग्रेजी में आता है ट्रस्ट। मतलब हिंदी में क्या कह सकता है?
ट्रस्ट एक जो भलाई के काम करने वाली संस्था होगी।
नहीं, ऐसा नहीं। ट्रस्ट मीन प्रभु को ये विश्वास, देखो
भरोसा,
हाँ भरोसा करो, भरोसा करो। तो देखो भरोसा और विश्वास में फर्क है। जब हम पहला आया तुम्हारा घर में ना, जरूर हमारे ऊपर तुमने विश्वास दिखाया, लेकिन उस वक्त क्या तुम हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो बोल नहीं सकता ना, क्योंकि भरोसा आने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा अनुभव चाहिए, थोड़ा एक दूसरे का मेल होना चाहिए, उसके बाद भरोसा पैदा होता है। शुरू में भरोसा पैदा नहीं होता है, विश्वास प्रकट होता है, लेकिन भरोसा बाद में आता है। तो उस तरीके से परमेश्वर भी कौन सा बात ढूंढता एक एक विश्वासी के अंदर, कि एक एक विश्वासी जो अपने पुत्र के ऊपर विश्वास दिखाता है, वो ढूंढता है कि जाते जाते पुत्र से पहचान होते होते पुत्र पर भरोसा पैदा हो जाए। पुत्र पर जब भरोसा पैदा होता है ना, जो भी पुत्र कहता है वो मानता है और वो चलता है। वो अलग बात है, वो विश्वास से बढ़कर है,
वो
आत्मिक बात है और वो कर्म है। जो भरोसा करता है ना, वो बहुत गहरे बात है, रिश्ते के अंदर बांधता है। तो ये बात है, पिता परमेश्वर ढूंढ रहा है विश्वासियों से, और इसके कारण इससे क्या बन जाता है? ओबीडियंस, मतलब आज्ञा पालन। जो परमेश्वर, जो प्रभु कहता है, प्रभु के शब्दों आज्ञा पालन होता है। तो परमेश्वर ढूंढ रहा है ये झुंड जो विश्वासियों से बढ़कर भरोसे आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह का पूरा शिक्षा को आज्ञा पालन करता है। इस झुंड कम है, बुलाए हुए ज्यादा है, लेकिन इस चुने हुए झुंड जो भरोसा में आता है और पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को आज्ञा पालन करता है, ये संख्या बहुत कम है। समझ गया अभी? तो बुले हुए बहुत ज्यादा, लेकिन चुने हुए बहुत कम, बहुत कम। तो ये बात तो प्रभु यीशु मसीह भी बोला, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों को देखा, चलो बहुत लोग हमारा चेला बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात, एक शिक्षा में एक बात मैं बताता हूँ, ये बहुत ही गहरे बात है, याद में रख लीजिए हमेशा। यूहन्ना 8:31, यूहन्ना 8:31।
यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था,
हाँ विश्वासी यहूदियों से बात कर रहा था,
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेहरे ठहरोगे।
यदि तुम मेरे शिक्षा में बनो रहोगे तभी तो सचमुच तुम मेरा चेले हो। अगर बना नहीं रहते नहीं चेले रहेंगे लेकिन नहीं चेले रहेंगे सचमुच नहीं। तो दो किस्म का चेले है, सचमुच चेले है और सिर्फ चेले,
नाम के
चेले है और सचमुच चेले है। तो ये बात तो हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ही हमने सुन लिया है कि प्रभु यीशु मसीह के सचमुच चेला बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा में हम बना रहना है। अभी प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा क्या है में हमने पढ़ा है मत्ती में 16वां अध्याय और 24वां वचन। मत्ती में 16वां अध्याय 24वां वचन।
तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो।
देखो अभी एक और बुलावा, अभी ये मेरा पीछा आने का आपको अगर आपको इच्छा हो, इच्छा की बात है, ये जबरदस्ती की बात नहीं है। अगर तुम मेरा पीछा आने का इच्छा है तो आपको क्या करना है, आपको बोलता है अपने आप को इनकार करना, अपने क्रूस, प्रभु का क्रूस नहीं, अपने क्रूस को उठाना है और मेरा पीछा करना है। चलो इसका मतलब भी हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त बंटवारा आता है विश्वासियों और पीछा करने वाले, विश्वासियों अलग और पीछा करने अलग। इस तरीके से एक विश्वासी जब वो फैसला लेता है प्रभु यीशु मसीह को पीछा करने के लिए, मतलब जब उनके अंदर इच्छा आ जाता है प्रभु यीशु मसीह को पीछा करने के लिए और जब वो फैसला लेता है तब वो बन जाता है प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वाला। तो हर क्रिश्चियन क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन में भी वैरायटी है। बुलाए हुए विश्वासी बहुत है हर एक कलीसिया में, लेकिन पीछे करने वाले क्रिश्चियन कम है, कभी कभी ढूंढना पड़ता है ऐसे क्रिश्चियन। उसमें और इनसे बहुत फर्क है, क्योंकि पीछे करने वाले क्रिश्चियन तो बहुत बड़ा फैसला लिया है और प्रभु यीशु मसीह को पीछे कर रहा है। तो ये पीछे वाले क्रिश्चियंस को के बारे में वचन में हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय 31वां वचन, 21वां वचन, पहला पत्र 2:21, 1 पीटर 2:21। पहला पत्रस 2:21।
और तुम किसी के लिए बुलाए भी गए हो।
देखो तुम किस लिए विश्वासी बना, यही कहता है यहाँ तो बता रहा पत्रस, इसीलिए तुम्हारे को बुलावा मिला, इसीलिए तुमने विश्वासी बना। किस लिए? आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने क्या बताओ?
क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया कर तुम्हें एक आदर्श दे गया।
आदर्श दे गया कि
तुम उसके पद चिन्हों पर चलो।
वही पद चिन्हों पर चलो, तो आपके लिए एक आदर्श छोड़ गया है और उस आदर्श के मुताबिक अब पद पीछा करना है, उसके 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 कदमों में पीछा करना है। अभी इस बात प्रभु यीशु मसीह के कदमों पीछा करने की बात जो है वचन में, इसका इसके लिए एक नाम भी दिया है, सचेत मार्ग। सचेत मार्ग वचन में पढ़ेंगे मत्ती सातवां अध्याय 14वां वचन। सचेत मार्ग और साकेत का फर्क है या एक ही है? देखो परमेश्वर कौन से राह में आपको चलाया।
क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े ही उसे पाते हैं।
थोड़े ही वो उसे पाते हैं, वो भी बराबर अनुवाद है, पहचानते हैं,
कम लोग पाते हैं,
मिलता है जिनको मिलता है,
जिनको मिलता है। तो तोड़े है वो लोग, कौन सा तोड़े? वो जुड़ जो चुने हुए तोड़े, वो तोड़े लोग इस साकेत मार्ग को देखता है, पहचानता है और उस पाटक के अंदर भी घुसता है, बहुत थोड़े लोग, बहुत थोड़े लोग। तो ये है प्रभु यीशु मसीह के कदमों को पीछा करने का जिंदगी। इस जिंदगी को नाम दिया गया है साकेत मार्ग, साकेत मार्ग। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है जो परमेश्वर खोल गया है प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए। और इन चेलों में से हम देखता है बहुत कम ये दूसरे मंजिल तक पहुंचता है, बहुत कम। बहुत सारे चुने विश्वासियों ये अगले मंजिल पहचानता भी नहीं है, उनके आंख पर पड़ता भी नहीं है। लेकिन अभी हम देख लेंगे ये चुने हुए लोग जो जो दूसरे मंजिल पहुंचता है, ये चुने हुए लोग के बारे में वचन में पढ़ते हुए हम देखता है ये लोग उस मंजिल पर पहुंचते पहुंचते एक वाचा बांधते हैं। ये वाचा बांधते हैं पिता परमेश्वर के साथ। वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 25:14, भजन संहिता 25:14, Psalms 25:14।
यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करते
हैं। हाँ, एक वाचा है, एक भेद वाला वाचा है जो वो प्रकट करता है। ये भेद वाला वाचा सबके पास ज्ञान नहीं है। इस भेद वाला वाचा तो प्रकट करता है परमेश्वर, तोड़ों के लिए प्रकट करता है, हम देखते हैं। तो ये भेद वाला वाचा, ये वाचा क्या है? ये वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ यर्दन में बांधा। वचन में पढ़ता है उसके उसके बारे में हिब्रानियों 10:7। हिब्रानियों 10:7।
तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र के विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ।
देखो, मैं आ गया हूँ तेरा इच्छा पूरी करूँ। सुन लो, तेरा इच्छा पूरी करने का मतलब क्या है? अभी रास्ता में करता है मेरा इच्छा, तो तेरा इच्छा अगर पूरी करना है तो मेरा इच्छा बिल्कुल हटाना है। तो यही प्रभु यीशु मसीह पहला किया। इसलिए हमारे को भी क्या कहता है कि पहला तुम करने वाला बात क्या है? अपने आप को इनकार करना है। अपने आप को इनकार करने के बाद ही आप पिता परमेश्वर का इच्छा तो कर सकता है। तो अपने आप इनकार किया प्रभु यीशु मसीह, और पूरा का पूरा पिता परमेश्वर का इच्छा करने के लिए पिता परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, और उसके बाद पिता परमेश्वर का इच्छा करने के लिए वो जो वाचा जो बांधा, यर्दन में एक चिन्ह वहां लगी जिसका नाम है बपतिस्म। बपतिस्म की जो बात जो हुआ उधर, बपतिस्म ये एक चिन्ह था। प्रभु यीशु मसीह टूट के आया नजरेत से यर्दन को। क्यों? क्योंकि आपने यर्दन का क्लास सुन लिया ना। यर्दन का मतलब क्या है? ये दुनिया, ये अभी का दुनिया जो गिरे हुए स्थिति में है, जो पाप और पाप के मजदूर मौत में पैदा होता है, ये है यर्दन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यर्दन से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हुए उनके ऊपर कोई मौत का मजदूर या मौत का दंड नहीं था, तो उसको ढूंढना था एक यर्दन चिन्ह के लिए। इसलिए वो आया यर्दन में करने के लिए। और जब वो आया और यर्दन में खड़ा, इसका मतलब था कि मैं अभी दुनिया में हूं पिता परमेश्वर। और जब ऐसा खड़ा, लो मैं तुम्हारा इच्छा करने के लिए खड़ा हूं। और उसके बाद आया एक भविष्यवक्ता यूहन्ना, इसलिए कहता है कि स्त्री से कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ इससे बड़ा। इसका मतलब क्या है? ऐसा मौका जो यूहन्ना मिला, कोई मनुष्य नहीं मिला। नहीं, इब्राहिम उससे बड़ा था, दाऊद उससे बड़ा था, लेकिन ये मौका नहीं मिला इस उस समय में, वो जिंदा नहीं था ये मौका मिलने के लिए। लेकिन यहूना बपतिस्मा यहूना को मिला ये मौका, क्या एक नहीं एक चिन्ह पिता परमेश्वर का बनने के लिए, क्योंकि वाचा प्रभु यीशु मसीह किससे बांध रहा है, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, और साथ में जो उनको पकड़ा और पानी में डुबाया और उठाए वो कौन है, नहीं वो किसका चिन्ह है, नहीं वो पिता परमेश्वर का चिन्ह है, नहीं 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 बपतिस्मा यहोना प्रभु यीशु मसीह के लिए बना एक चिन्ह पिता परमेश्वर का। हम लोग जब बपतिस्मा लेता है ना, हमारा बगल में खड़ा हुआ भाई एक चिन्ह बन जाता प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि हम बांधता है हमारा वाचा परमेश्वर के साथ, लेकिन परमेश्वर हमारे को प्रभु यीशु के साथ बेचता है, प्रभु यीशु के हाथ में बेचता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वाचा बांध रहा था, किसके हाथ में गया, परमेश्वर, तो परमेश्वर का चिन्ह कौन बना, इसलिए उसका सारा जिंदगी रेगिस्तान में गुजरने लगा, काबिल बनने के लिए इतना बड़ा मौका मिले, इतना शुद्धगी करने चाहिए था, इसलिए उसको ऐसा जिंदगी गुजारने लगा पड़ा। तो यहुन्ना बपतिस्मा इतना बड़ा मौका मिला पिता परमेश्वर का चिन्ह बनने के लिए, और ये चिन्ह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सच परमेश्वर का बेटा, ऐसा बड़ा मौका कोई मनुष्य नहीं मिला। ये सबसे बड़ा मौका है कि खुद परमेश्वर का बेटा को बपतिस्मा देने का मौका मिला। तो आपको याद होगा बपतिस्मा का जो चिन्ह है, पानी में करना है, उसके बाद पीछे जाता है पानी के अंदर, उसके बाद दोबारा खड़ा करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा, ब्रदर ने बताया होगा आपको कि करते हैं दुनिया में पानी का पूरा आधे आधे पानी होते हैं, आधे पानी के अंदर आधे पानी के बाहर। तो पानी के अंदर संसार के अंदर है, क्योंकि अभी भी हम मनुष्य है, हम संसार के खाना ही खाते हैं, हम संसार के घर में ही गुजरते रहते हैं, संसार में काम ही करते हैं, संसार में कमाते हैं, संसार में हमारे रिश्तेदार है, तो हम पानी के अंदर ही है। लेकिन बाहर भी आ गया है, वो है समझदारी का आंख खुल गया है, परमेश्वर के बारे में जान गया है, परमेश्वर के आत्मा के बारे में जान गया है, और सांसारिक आत्मा से हट के अभी नया आत्मा में आ गया है। और ऐसा करते हुए जब पिता परमेश्वर के साथ हम वाचा बांधते हैं, हमारा समर्पण को का चिन्ह क्या है कि पीछे लेके जाता है। पीछे का मतलब क्या है, अभी हम के विरुद्ध हम जिएंगे, दुनिया जो कोई बातों के लिए जीते हैं वो हमारे लिए वो है सब दुश्मनी, नहीं परमेश्वर के साथ दुश्मनी खत्म। तो हम बुराई के लिए नहीं जिएंगे, हम अच्छाई के लिए जिए, हम बुरे सिद्धांतों को इनकार करके हम अच्छे सिद्धांतों को अपनाएंगे, ये दुनिया में पीछे जाने के जैसे है। तो हम पीछे जाएंगे कब तक, पानी के अंदर तक। पानी के अंदर का मतलब है माउथ, लेकिन हमारा माउथ के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, खुद ही उठाएगा, उठाने का मतलब है पुनरुत्थान, ये दोबारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारा पुनरुत्थान देंगे। वो सारे वचन आप बार बार पढ़ लो, बहुत गहरे बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर सा चिन्ह है जो बपतिस्मा का चिन्ह बन गया है। लेकिन ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह पहला ऐसा बपतिस्मा लिया, पहला परमेश्वर का इच्छा करने का फैसला प्रभु यीशु मसीह ने ही लिया। उसके बाद अभी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, देखो मैंने अपने पिता का इच्छा पूरा कर दिया है, क्या तुम्हारे अंदर वो इच्छा है हमारा पिता का इच्छा पूरा करने के लिए, क्या तुम मेरा पीछा करोगे। हाँ, अगर तुम मेरा पीछा करने का निर्णय लेता है, आप मेरे जैसे नहीं बोला, लेकिन मेरे जैसे अपने आप इनकार करो, क्रूस उठाओ और हमारा पीछा करो, अपने आप इनकार करने का मतलब है दुनिया का आत्मा, अपने दुनिया का आत्मा जो हमारे अंदर है, ये इनकार करने को शुरू करो। अपने क्रूस उठाना का मतलब क्या है, ये बलि का जीवन जो अभी हम जिएंगे प्रभु के लिए और परमेश्वर के इच्छा के लिए, और हमारा पीछा करो का मतलब क्या है, हर दिन ऐसे ही जीते रहो मरते दम तक। ये है बुलावा, यह है बहुत ही बड़ा बुलावा। इस बात आपको याद होगा वो डिवाइन प्लान चार्ट में, यहाँ आपने याद होगा कि इधर दिखाया आपको सुसमाचार युग के समय में कलीसिया कैसा दिखाया गया है, कलीसिया कैसा दिखाया गया है, चार झुंड है। एक लकीर है एम, एम का लकीर, एम के लकीर के ऊपर है वो दो हिस्सा जो छोटा एम और छोटा एन यहाँ दिया गया है, लेकिन वो आज तो हम देखने वाला है। लेकिन एम के लकीर के नीचे, एन के लकीर के ऊपर, एन के लकीर के ऊपर एक पी करके एक बहुत बड़ा बक्सा देकर, वो बड़ा बक्सा है विश्वासियों, लेकिन पी एन के लकीर के नीचे एक क्यू का बक्सा है। वो कौन है, वो बंदे हैं जो आजकल मसीह के नाम से पुकारते हैं, उसके नाम है जॉन, पीटर, मेरी, माइकल, लेकिन वो विश्वास भी नहीं है, वो विश्वास भी नहीं है। हमारा सोनिया गांधी जी क्रिश्चियन है ना, नाम में, नाम में टीका लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, विश्वास है क्या प्रभु पर, शक है पता
नहीं
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल जो क्या कहता है हमको, उसको हिपोक्रिट कहता है, कपटी, कपटी लोग हैं। ये कपटी जुन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल, बहुत ज्यादा विज्ञानियों भी हैं जो मसीह के नाम से पुकारते हैं, और बहुत सारे सेवा करने वाले पास्टरों और फादरों, क्यों बनाते हैं पादरी, बनाते हैं कोई काम के लिए, मेडिकल कॉलेज में चलाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में चलाता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन प्रभु के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं। पास्टरों हैं जो काम नहीं मिला लड़का, चलो कोई काम नहीं मिला ना पास्टर बन जाओ, तो पास्टर बनते वक्त क्या काम है, सिर्फ बाइबल पकड़ना है, पकड़ना है बस उतना है। अब थोड़े चार शब्द सीखना है, बराबर ढंग से बोलना है, बराबर टोन से बोलना है, जय मसीह, जय मसीह, बराबर से बोलना जय मसीह, और बोलना द कैसे हो, अच्छे है प्रभु के नाम से हम हालेलुया, और ऐसे 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 बातें करते करते वो पास्टर बन जाता है, क्योंकि ना कोई उनसे कोई वचन पूछने वाला है, और वो जब वो मन आता है कोई वचन दोहराता है बस, और चार पांच प्रार्थना करता है, खाना भी मिलता है और साथ में बख्शीश भी मिलता है। तो ऐसा भी बहुत सारे है, विश्वास का नाम की बात नहीं है, प्रभु के ऊपर जब विश्वास होता है ना दिल की बात है, वो उनके अंदर दिल के अंदर वो विश्वास नहीं है, तो कपटी भी बहुत ज्यादा है। तो पिछले क्लास में आपने देखा है ये दोनों जून एन का प्लेन जो है ना, वहां आदम था, उसके बाद हम देखता है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन बीच में देखता है इब्राहिम, आदम था परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ परिपूर्ण मामस शरीर, लेकिन इब्राहिम क्यों इस एन के आखिर में है, इब्राहिम के विश्वास के कारण से पिता परमेश्वर उसको धर्मी कह रहा। और अभी सुसमाचार के युग में जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो धर्मी बन जाता है, तो ये क्यू पी का जो बक्सा धर्मियों का मतलब विश्वासियों जो धर्मी के स्थिति में वहां दिखाया गया है। तो ये सब आपने पिछले बार आपने सुन लिया है और बहुत कुछ ने सीख लिया होगा। तो ये नए सृष्टि सॉरी ये चुने हुए जुंड जो है, इसके बारे में वचन में हम कहता है कि वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है और जब वाचा बांध लेता है वो बन जाता है, वचन में कहता है नया सृष्टि, नया सृष्टि। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17,
यदि कोई दूसरे में है तो वह नई सृष्टि में है, पुरानी बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई।
तो मसीह में है, हमने पहला क्या सोच रहा था, विश्वास में, लेकिन ये विश्वास की बात नहीं। मसीह में है का मतलब क्या है, मसीह के वाचा के अंदर है, मसीह के वाचा के अंदर है, मसीह के शरीर के अंदर है। वो जो उस मकाम पर जो पहुंचता है वो नए सृष्टि बन जाता है। नए सृष्टि का मतलब क्या है, नए सृष्टि का मतलब ये है कि वो मनुष्य है, मनुष्य का दिमाग है, लेकिन साथ में मिल गया अभी एक नया दिमाग, स्वर्गीय दिमाग। वो स्वर्गीय दिमाग दिया गया है और वो स्वर्गीय दिमाग अंदर है इन नए सृष्टियों के अंदर। तो इनको और बाकी दुनिया वाले लोगों का फर्क क्या है कि इनके पास स्वर्गीय दिमाग भी है, दुनिया दिमाग भी है। दुनिया दिमाग को दबाने का वाचा कर दिया है और स्वर्गीय दिमाग को बढ़ाने का वाचा बांध लिया है। तो ये है नया सृष्टि। नया सृष्टि का दो मन, दो दिमाग वचन में पढ़ते हैं, कोलोसियों 3:10। कोलोसियों 3:10,
और नए मनुष्यता को पहन लिया है जो अपने सुधरहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है।
तो नया मनुष्य, पुराना मनुष्य, पढ़ लीजिए।
और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है।
और पुराना मनुष्य भी बोलते हैं ना, अगले वचन,
उसमें ना तो यूनानी रहा ना यहूदी,
नहीं उससे पहले वचन,
अच्छा, में एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व के कामों समेत उतार डाला है।
देखा, पुराना मनुष्यत्व मतलब पुराना मन और नया मन, पुराना मन गिरे हुए मन, नया मन स्वर्गीय मन, ये दो मन मिलता है, ये नया सृष्टि। इसलिए कहता है हर चीज अभी नया बन जाता है। हर चीज नया बनने का मतलब क्या है कि मन के अनुसार हम जीता है, मन के अनुसार, मन के अनुसार हम सोचते हैं, मन के अनुसार हम चलते हैं, मन के अनुसार हमारे पास सपने होते हैं, मकसद होते हैं, है ना, और हमारे लिए एक मार्ग भी रखा है मन के अनुसार। कहता है कि हर चीज नया बन जाता है। नया बनने का मतलब क्या है इन नए सृष्टियों, इसलिए कि वो नया मन मिल गया है जो आत्मिक है, जो स्वर्गिक है, उसके अभी उसके सारे मकसद, उसके सारे मार्ग, उसके सारे इच्छा, उसके सारे योजनाएं बदलता है, बदल जाता है, हो जाता है आत्मिक, बन जाता है आत्मिक। तो आत्मिक के अनुसार अभी सोचते हैं, आत्मिक के अनुसार उसका इच्छा भी होता है और आत्मिक के अनुसार वो जीने का कोशिश करता है। तो ये बात तो हमने देखा है, हर चीज नया बन जाता है इन नए सृष्टियों के लिए। तो ये नए सृष्टियों जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है प्रभु यीशु मसीह के जैसे, और जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, मतलब जो प्रभु बोला जो मेरा पीछा आने का इच्छा करते हैं, जो पर प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं, ये लोग दिखाया गया है उस चार्ट में लकीर एम। लकीर एम जो हम देखा है ना, वो तो सिर्फ सुसमाचार युग में है। लकीर एम का मतलब है नए सृष्टि का स्थिति, नया सृष्टि का स्वभाव। अभी ये नया सृष्टि का स्वभाव जो है, इसके ऊपर दिखाया गया है दो झुंड, छोटा झुंड है एन और बड़ा झुंड है एम, एम और एन दिया है। एम और एन बन जाता है नया सृष्टि। तो नया सृष्टि में भी दो बंटवारा है, चुने आप बुलाए हुए हमने देखा, और उसके बाद बुलाए हुए से बन जाता है थोड़ा चुने हुए, लेकिन चुने हुए के बाद भी बन जाता है थोड़ा तो वफादार एक और वही बात है। तो हम देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल तीसरा फिल्टर उधर आ गया है। हिब्रानियों तीसरा अध्याय पहला वचन, हिब्रानियों 3:1
इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो।
इस वचन बताता है पवित्र भाइयों, पवित्र भाइयों, पवित्र भाइयों कहता है, दूसरा कहता है आपको मिल गया है स्वर्गीय बुलावट। तो स्वर्गीय बुलावट इधर पढ़ते हैं और पवित्र भाइयों का शब्द भी इधर पढ़ते हैं। ये चुने हुए जुंड जो है ना, इसको इसका मिलता है पवित्र भाइयों, अंग्रेजी में सेंट, संत। ये संत का शब्द सिर्फ इनको मिलता है। असली बाइबल में और दुनिया में संत का फर्क क्या है मालूम? दुनिया में संत उनको कहता है जो दुनिया छोड़ के पहाड़ में चले जाता है और किधर अलग से रहता है, अलग किस्म का जीवन गुजरते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, उनको संत संत है। लेकिन बाइबल में संत उसको कहता है जो पिता परमेश्वर से वाचा बांधता है, उसको संत कहता है।
तो सबको बोलते हैं जो
जी 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 जी। तो देखो देखो फर्क कितना है। वचन के अनुसार संत वो है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ, सॉरी जो पिता परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। आपने याद होगा, आपने पढ़ा हुआ वो वचन भजन संहिता 50वां, भजन संहिता 5वां वचन, भजन संहिता 50:5। भजन संहिता 50:5
मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी
है। भक्तों मतलब संतों। तो बाइबल के अनुसार संतों वो है जो पिता परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। तो दुनिया का मतलब संत और बाइबल का मतलब बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो मिलता जुलता भी नहीं है। तो यहाँ तो देखता है कि ये पवित्र भाइयों, ये संतों मिलता है एक स्वर्गीय बुलावट। एक और वचन पढ़ता है अभी फिलिप्पियों 3:14 वचन,
फिलिप्पियों
3:14
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे
ये वचन बोलता है कि एक दौड़ है। ये वचन कहता है कि एक इनाम है। ये वचन कहता है मसीह यीशु मसीह के अंदर ऊपर का बुलावट, स्वर्गीय बुलावट, दौड़, इनाम, स्वर्गीय बुलावट, दौड़ और इनाम। ये बहुत ही बड़े बातें हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारा बहुत से विश्वासी भाई और बहनों गलती से वचन से पढ़ते हैं कि दौड़ उनका है, ये इनाम उनका है और ये स्वर्गीय बुलावट उनका है। ये बिल्कुल गलत है। ये दौड़ किनको मिलता है? जिन्होंने ये वाचा के अनुसार इस चुने हुए जुंड के अंदर आ जाता है, सिर्फ उनको मिलता है एक स्वर्गीय बुलावट, सिर्फ उनके लिए एक दौड़ और सिर्फ उनके लिए एक इनाम। विश्वासियों, जो सिर्फ विश्वासियों होते हैं उनके लिए कोई स्वर्गीय बुलावट नहीं है। ये बात तो हम बहुत साफ साफ को समझना है। क्योंकि आजकल बहुत सारे मसीहों जब मर जाते हैं, हम इश्तेहार देखते हैं पेपर में, स्वर्ग को चला गया, स्वर्गवास हुआ, नहीं स्वर्गवास नहीं हुआ, मिट्टीवास हुआ,
नरकवास हुआ,
नहीं मिट्टीवास हुआ, मिट्टीवास। चौक दाऊद मिट्टीवास हो गया, सुलेमान को मिट्टीवास हो गया, सारे पुराने नियम के सारे लोग मिट्टीवास हो गया है, और ये लोग भी मिट्टीवास होते हैं, मिट्टी नहीं मिट्टी। तो वचन में बताया है जो स्वर्गवास होना है और स्वर्गीय बुलावट मिलना है, क्या जरूरत है का, क्या बहुत जरूरी है, ये वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 3:3। यूहन्ना 3
यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुम्हें तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।
देखो सच सच कहता है, परमेश्वर के राज्य में आप अंदर घुसना है तो आप क्या होना है, दोबारा जन्म लेना है, दोबारा नया जन्म लेना है। ये नया जन्म का मतलब क्या है, वो उस दिन सुनने वाला निकोदेमो ने पहचाना। निकोदेमो क्या पहचाना ये शब्दों से, अगले वचन 4 पढ़ लेंगे। अगले वचन
निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है।
तो ये दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या है, जैसे ही हम अपने माँ के कोख से जन्म लेते हैं उस तरीके से दोबारा एक जन्म लेना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, यही तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा था। तो ये बात सुनते ही बूढ़े होके निकोदेमो को चौंक गया, ये क्या शिक्षा है, मैं इतना बूढ़ा होने के बाद तुम बोलते हैं कि मैं दोबारा अपने माँ के कोख के अंदर घुसना है, ये क्या नामुमकिन बात है। लेकिन यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर घुसना है, अगर तुम घुसना है तो दोबारा तुम जन्म लेना है जैसे तुम जन्म लिया अपने माँ के कोख से। अभी इसका मतलब और क्या है, अगले वचन में बताता है, पढ़ लो आगे 5।
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह कण के राज में प्रवेश नहीं कर सकता।
अभी बताता है कि स्वर्ग को जाने का, जन्माने का तरीका क्या है, जल से और आत्मा से। ये मतलब क्या है, मैं हम बाद के क्लासेस में देखेंगे, इसका मतलब बहुत ही गहरा है, जल से और आत्मा से। लेकिन आज हम सिर्फ ये बात देख लेंगे कि यहाँ जब प्रभु यीशु ने बोला कि दोबारा जन्म लेना है, वो यूनानी के भाषा में वो कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, वो शब्द का नाम है जेनाओ, GENNAO, जेनाओ। जेनाओ एक यूनानी शब्द है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल किया जन्म लेने के लिए। जेनाओ का मतलब दो, जन्म लेने मतलब न सिर्फ जन्म लेना, मतलब इसका दूसरा मतलब है पैदा होना एक है, जन्माना एक। जन्माना आपको जानता है ना, जन्माना मतलब जन्म लेने का शुरुआत, जब बीज रहता है वहां से शुरू होता है जन्माना। पैदा होना का मतलब क्या है, 9 महीने के बाद जब पूरा का पूरा शरीर का उत्पन्न होने के बाद वो जो पैदा होता है ना, वो पैदा होना। तो जन्माना अलग और पैदा होना अलग, ये दो शब्दों का मतलब आता है यूनानी शब्द जेनाओ के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह बताता है इन 5 में यूहन्ना 3 कि अगर आप परमेश्वर के राज्य के अंदर घुसना है, आपके अंदर एक जन्माना होना चाहिए और बाद में पैदा होना चाहिए,
जन्म की प्रक्रिया में पढ़ना, मतलब जन्म की प्रक्रिया, जन्म बीज से शुरू होता है और अंत कब होता है, जब पैदा हो जाता है। तो
जानते हैं ना, जब गर्भ में, जब कोख में शुरू होता है जन्म की प्रक्रिया, तभी तो सिर्फ एक बीज के रूप होता है,
अंकुरित होता है
जी, उधर से शुरू होता है। बोलता है कि अभी एक बच्चा जन्माया, जन्माया का मतलब है इंग्लिश में कंसीव्ड, कंसेप्शन। तो वहां से बढ़ते 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 9 महीने एक शरीर का रूप आ जाता है, पूरा का पूरा रूप आ जाता है, एक बच्चा बन जाता है, और वो बच्चा बाद में कोई पैदा होता है, पैदा होता है। तो कंसेप्शन अलग, बर्थ अलग, लेकिन ये दो शब्द का मतलब आता है एक ही यूनानी शब्द, जनाओ, जनाओ। तो जनाओ में प्रभु यीशु मसीह ये बताता है, अगर तुम सचमुच परमेश्वर के राज्य के अंदर घुसना है तो आप दोबारा जन्माना है और पैदा होना है। यस, लेकिन इसका
पढ़ना है, उस प्रक्रिया में जब तक पढ़ते नहीं तब तक आप पैदा नहीं हो सकते, और जब पैदा नहीं होगे तो आप राज्य में नहीं जाते,
तो वो राज्य के अंदर आप जाना नामुमकिन है। इसमें बहुत गहरे बातें हैं, आपके अंदर बहुत सारे सवालों पैदा हो गया होगा, लेकिन अभी इस क्लास उस क्लास में हम नहीं जा रहे हैं। बस हमने ये बात तो इसलिए छूया ताकि आपको जान जाए कि परमेश्वर के राज्य के नाना स्वर्ग को जाना कोई आसान काम नहीं है। थोड़ा बहुत साफ तरीके से थोड़े बातों हैं, थोड़ा शिक्षा है जो हम समझना है और हम मानना है, उसके बाद ही हम जान जाएगा कि स्वर्ग का बुलावट का मतलब क्या है। लेकिन हमारा विश्वासी दोस्तों जो सिर्फ विश्वासी है मसीह के अंदर, उनको, उनके लिए ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ, ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो गया, और इसलिए कि ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ उसको स्वर्ग जाने का बुलावट ही नहीं है। कभी कभी औरत बोलते हैं, हम हाथ भी सुना होगा, कोई औरत बोलता है मेरे को गर्भ हो गया है, मेरे को बच्चा जन्म लिया है, जन्माया हो गया है, लेकिन अस्पताल में जाके देखे तो स्कैन करता है, क्या बोलता है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो गया।
जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, हम देखते हैं औरत को उल्टी वगैरह आती, तो उसको लगता है शायद मैं गर्भवती हो गई हूँ, उसको लगता है कि शायद मैं गर्भवती हो गई, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते तो वो बोलते नहीं नहीं ये तो ऐसा।
तो देखो, गर्भवती औरत को भी सही तरीके से गर्भवती होता है तो बोल सकते हैं हाँ सचमुच उनको अभी बच्चा पैदा होने वाला है। उसी तरीके से स्वर्ग के बुलावट मिलने के बाद ही स्वर्ग के बारे में बात कर सकता है। जब स्वर्ग के बुलावट ही नहीं है, हम अगर हम स्वर्ग के बुलावा है हम बोलता है तो हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करते हैं, वो करने लोग को बाद में बहुत ही पछतावा होते हैं,
ये सब संसार में पूरी कल्पना ही हो गई,
पूरा का पूरा कल्पना
है ही नहीं,
बिल्कुल बिल्कुल
नहीं है, तो ये इंटरव्यू भी नहीं दे रहे
तो बहुत 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 ऐसा कल्पना हो रहा है ब्रदर जी। तो ये बात तो पहला हम परमेश्वर के वचन से सीखना है कि ये बात क्या है, क्योंकि ये बात क्या है हम वचन में हम पढ़ता है, ये एक रहस्य है, ये एक वेद है, ये एक वाचा है जो हम जानना है, हम परमेश्वर से सुनना है और उसके बाद परमेश्वर के साथ बांधना है, और उसके बाद परमेश्वर हमको जन्माते हैं, और तभी हम नए सृष्टि बन जाते हैं, और नए सृष्टि बनने के बाद हमको जानता है कि हमारे को एक स्वर्गीय बुलावट है। ये वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 25वां अध्याय और 14वां वचन, Psalms 25:14
25:14
भजन संहिता 25:14
युवा के देह को वही जानता है जो उससे डरता है, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा।
देखा, यहो का वेद है जो कोई थोड़े लोगों के लिए वो प्रकट करता है, वो क्या है, वो वेद, वो एक वाचा है, और इस वाचा जो प्रकट करता है वो सभी के लिए नहीं है। और ये कौन सा वाचा है? भजन संहिता 50:5 कहता है ये बलिदान का वाचा। कौन सा बलिदान होता है? शरीर का नहीं, अपने इच्छा का बलिदान। नहीं, हमारा इच्छा परमेश्वर आपको दे दिया है, ये आपका स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपका इच्छा परमेश्वर आपको दे दिया है। लेकिन अभी क्या मौका है कि ये इच्छा जो मेरा इच्छा है मैं बलिदान में चढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अभी मेरा इच्छा को इनकार करता हूँ और मैं अभी पिता परमेश्वर का इच्छा अपनाएंगे। यस, ये
जो आपने दिया वो उसको मैं नहीं लेता, आपकी इच्छा को मैं लेता हूँ। आपने तो हमें फ्रीडम,
मतलब मेरे इच्छा के विरुद्ध
आपने जो फ्रीडम दिया मैं उस पर चलकर कि मैं इच्छा
जी मैं आपकी इच्छा में चलूँ। तो परमेश्वर की इच्छा को सीखना है और परमेश्वर की इच्छा को सीखने के बाद उसके अंदर चलना है। तो ये है अपने आप को इनकार करना और परमेश्वर का और पिता परमेश्वर का इच्छा को अपनाना। अभी ये लोगों जो ऐसा वाचा बांधते हैं वो लोगों ये एक ही बपतिस्मा लेता है, जो वचन में कहता है एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु, एक ही बुलावा, है ना, एक ही बपतिस्मा। जो यूहन्ना जो एफेसियों में 4:5 वचन में पढ़ते हैं, 4:5 एफेसियों 4:5 वचन,
एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा।
एक ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, एक ही विश्वास है, अति पवित्र विश्वास, और एक ही बपतिस्मा। ये वाचा बांधने का एक चिन्ह। तो ये बपतिस्मा में बहुत सारे जानकारी हम 53 में हम देख लेंगे। लेकिन जो पानी से जन्माते हैं और जो आत्मा पर पैदा होते हैं, देख लो, पानी में जन्माते हैं
शुरू होता है
और आत्मा में पैदा होते हैं। आत्मा जो पैदा होता है आत्मिक शरीर में पैदा होता है, समझ लो। थोड़ा झलक दिखा रहा हूँ अभी।
मतलब क्या, शुरुआत आप पानी गर्भ में पड़ गए कब? जब आपका आप इस प्रक्रिया में पड़ गए। लेकिन वो प्रक्रिया 9 महीने की होती है और 9 महीने के बाद पैदा होते हैं। जब पैदा होंगे तो फिर आत्मा में। तो ये है एक सिलसिला, ये है एक प्रक्रिया।
ये है, प्रभु कहता है कि जब तक आप पानी से, जल से और आत्मा से नहीं जन्म लेते हैं और आप परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं घुस सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है।
जैसे अभी संसारिक बीज को देख लो, वो जमीन में डाला है, उसको पानी में वो अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित होने के बाद ही वो बड़ा बड़ा एक पौधा।
नहीं, ये अलग है, नहीं ये अलग है, ये अलग।
एक प्रैक्टिकल एक बच्चे वाली बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही है ना, जब हम वो एक बीज मरा हुआ होता है, जब तक वो बीज अंकुरित नहीं होगा, हम पेट में जाते हैं, हम मार्के घर में एक बीज ही जाता है ना, वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, जैसे एक पौधा बड़ा होता है, ऐसे वो शरीर में बढ़ता जाता है।
ना, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ ऐसा नहीं है। अगर आप
परिपूर्ण होने जब पूरे शरीर में बन जाते हैं।
नहीं, मैं आपको जैसा आपको उदाहरण देता ना, मैं भी आपसे, अगर आप हाथी बनना है, अगर आप हाथी बनना है, आप ऐसे ही हाथी नहीं बन सकता है। आप हाथी के कोख से जन्म लेना है, है कि नहीं? तभी आपको मिलेगा हाथी का शरीर, तभी आपको मिलेगा हाथी का स्वभाव, तभी आप बिल्कुल हाथी का होगा।
मतलब वो मैं ये बता रहा, जैसे बीज जमीन में, तो ऐसे हम अपने माँ के कोख में ऐसे अंकुर होते हैं, धीरे 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 पौधा, ऐसे हम बढ़ते जाते हैं।
है, लेकिन मैं स्वभाव, अलग स्वभाव की बात कर रहा हूँ। प्रभु क्या कह रहा था, आप मनुष्य है, आप स्वर्ग जाना तो ये मनुष्य के रूप में नहीं जा सकता। ये तो प्रभु कह रहा है, आप मनुष्य है, मनुष्य रहते ही, मनुष्य मरते ही आप नहीं जा सकता है। आप वहां जाना है तो वो आत्मिक स्वभाव आपको पाना है, आत्मिक स्वभाव में आपको बदलना है, आत्मिक स्वभाव पाने का मतलब है जल से जन्माना और आत्मा में पैदा होना। लेकिन और भी बहुत सारा जानकारी हम इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन बस मैंने ये बात इसलिए लिया कि आपको बताना है कि सिर्फ विश्वासी होना और सिर्फ प्रभु के अंदर छोटे छोटे बच्चे रहना जो परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ नहीं जानता है, जो सिर्फ परमेश्वर जो सिर्फ प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो सिर्फ विश्वासी होते हैं, वो तो बिल्कुल स्वर्ग बुलावा तो उसके पास नहीं है। अगर वो लोग मर जाते हैं उसको 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 स्वर्ग का बुलावा नहीं है। लेकिन स्वर्ग का बुलावा तब शुरू होता है जब वो विश्वासी से चुने हुए हो जाता है। जब वो चुने हुए हो जाता है वो तब ही उसको नए स्थिति में चले जाते जाने के कारण से, इसलिए वो नए सृष्टि बन जाता है, इसलिए कि वो परमेश्वर से जन्माते हैं नए सृष्टि, तभी उसको स्वर्गीय बुलावा होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन विश्वासियों जो प्रभु की प्रभु पर विश्वास होते हैं और विश्वास से ही मर जाता है, उनको क्या हो जाएगा? वो वापस इस दुनिया में जी उठ के आएंगे। जब शारीरिक पुनरुत्थान होते हैं ना, वो सारे मसीहों वहां में आएंगे, तभी प्रभु इसी दुनिया का राजा होगा। उनके हाल क्या होगा? थोड़ा शर्मिंदित हाल होगा, क्योंकि वो थोड़ा धोखा से काट के धोखे वाले शिक्षा से फंसे हुए होके उस झूठी शिक्षा में फंसे हुए, उस वक्त उसको मालूम हो जाएगा कि हम तो गलत रास्ते में चला, और सही रास्ता तभी प्रकट हो जाएगा, और उसने उस सारे कर्मों जो किया और अलग अलग काम जो किया उस वक्त बहुत शर्म वाले बात होंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं, उस वो इसलिए कि पहले ही प्रभु यीशु मसीह का थोड़ा पहचान था, उस वक्त राजमार्ग में उसको थोड़ा आसानी में चलने के लिए होगा, लेकिन उसका स्वर्गीय बुलावा नहीं है। तो ये बात तो हम देखा है विश्वासियों के बारे में। अभी हम देख लेंगे ये स्वर्गीय बुलावा क्या है, ये इनाम क्या है, क्योंकि चुने हुए के लिए एक स्वर्गीय बुलावा है और हुए के लिए एक इनाम है। वचन से शुरू करेंगे, रोमियो 2:7, रोमियो 2:7, जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों को पीछा करने के लिए जो फैसला लेता है, इन चुने हुए लोगों के लिए क्या इनाम है और क्या स्वर्गीय बुलावा है, पढ़ लीजिए।
जो सुकर्म में इससे लेकर महिमा और आदर और अमरता कुछ है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा।
ये वचन अंग्रेजी में बराबर अनुवाद होता है, हिंदी में इसका अनुवाद में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि अंत में बोलते हैं उनको अनंत जीवन देता है, आता ना, एक्चुअली ऐसा नहीं आना चाहिए।
रोमियो 2:7
दोबारा पढ़ लीजिए।
जो स्वर्ग में से लेकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है,
उसमें है
जीवन देता है।
वो अमरत्व जो अनंत जीवन
देगा
ऐसा नहीं आता है। अमरता अनंत जीवन नहीं है, अनंत जीवन अमरता नहीं है। ये बात पहले समझना है, अमरता जो है ना वो अनंत जीवन नहीं है।
वो तो अमरता पर से देखी थी, वो तो
बिल्कुल बराबर। लेकिन मैं पहला क्या बोलता हूँ, अमरता अनंत जीवन नहीं है और अनंत जीवन अमरता नहीं है। क्यों? जिनके पास अमरता है उसको अनंत जीवन भी है, लेकिन जिसके पास अनंत जीवन है उनके पास अमरता नहीं है। इसलिए मैं बोला अमरता अलग और अनंत जीवन अलग। और जो अमरता के खोज में होता है उसको अनंत जीवन देता है।
अनंत जीवन मीन्स क्या हो गया कि वो कभी मतलब हमेशा के लिए
नहीं। ब्रदर जी मैं तो वो बात नहीं बोल रहा हूँ, नहीं वो बात नहीं बोल रहा
हूँ। आप रुक जाओ,
अभी रुक जाओ, जरा सुन लीजिए। अमरता का मतलब है अमर, नहीं मर सकता, मरने का गुंजाइश नहीं है। अनंत जीवन का मतलब है जीवन सदा के लिए, जीवन सदा के लिए। लेकिन जीवन सदा के लिए जरूर है, लेकिन इसके स्वभाव अमर है वो नहीं कह सकता है। अमर स्वभाव शरीर के अंदर होता है और वो सिर्फ पिता परमेश्वर के पास है। और प्रभु यीशु मसीह जब ही जी उठाना तीसरा दिन, पिता परमेश्वर वो स्वभाव अपने पुत्र को भी दिया है। आपको याद होगा यूहन्ना 5वां अध्याय में बोला है जो जीवन पिता के अंदर है वो पुत्र को देने के लिए वो फैसला लिया है। और कलवारी के मौत के बाद तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, पुनर्तन हुआ, उसको मिला अमर, अमरत्व, अमरत्व स्वभाव। तो अमरत्व स्वभाव जो होता है उसका स्वभाव ये है कि कभी नहीं मर सकता, मरने का गुंजाइश ही नहीं है। अभी सिर्फ दो लोग के पास है अमरत्व, पिता परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला, और सृष्टि करने वाला अपने सृष्टि अपने इकलौता पुत्र को अभी उनको अमरत्व दिया है। अभी वो भी अमरत्व में है। अभी ये वचन कहता है जो सुकर्म, क्या कहता है, क्या कर्म है वो?
अच्छा काम,
अच्छा काम, जो अच्छा काम में स्थिर होता है, करते रहते हैं, उसको आदर महिमा और अमरत्व के खोज में होता है। अभी अमरत्व किसको अभी परमेश्वर देने को योजना बन गया है? प्रभु यीशु मसीह के चेले के लिए भी, प्रभु यीशु मसीह के चेले को भी ये अमरत्व का इनाम पिता परमेश्वर रखा है।
अभी तक यीशु मसीह के लिए था, अब हम विश्वास करते हैं इसमें से, तो हमारे लिए भी है।
नहीं, खाली विश्वास में
सुने हुए लोग,
सुने हुए लोग,
सुने हुए भी नहीं, वफादार,
वफादार तो कलीसिया होगी।
जी जी, महिमा के कलीसिया, महिमा के कलीसिया, महिमा के कलीसिया को मिले अमरत्व,
अमरता,
अमरता। तो अमरता जीवन उनको मिलेगा जो वफादार मिले स्थापित हो जाए,
कदमों पे चलते चलते वफादार,
वफादार जो स्थापित होता है। अभी ये वचन में दिया है ना, उनको अनंत जीवन देगा। एक्चुअली उधर क्या आना चाहिए कि अमरत्व के कोच में होता है अमरत्व, सॉरी अनंत जीवन देगा, उसको शब्द निकालना है, अनंत जीवन देगा। पढ़ लो जरा, पढ़ लो, पढ़ लीजिए। यस,
enjoying sick glory and honor and
immortality
he builds his eternal life.
ये कौन सा translation है? English कौन सा? NIV है?
NIV है,
NIV नहीं पढ़ना है, KJV पढ़ना है, King James Bible, KJV में पढ़ लो, King James Bible में Romans 2:7, who those by patient continuance in well-doing seek for glory, honor, immortality, comma, eternal life. Pardon? Romans 2:7, to them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, comma, eternal life.
इधर निकाला हुआ है, ये देखो, दो साथ में जाओ, हां
देन वो वाइब्रेशन
कंटिन्यूएंट
इन वेल गोइंग सिक फॉर ग्लोरी एंड फॉर एंड इमोर्टैलिटी टू द लर्ड लाइफ
कॉमा इटर्नल लाइफ, है ना?
हां जी,
कॉमा इटर्नल लाइफ, इसका मतलब क्या है? आता ना कॉमा इटर्नल लाइफ, हाँ, फॉर दोज हु बाय पेशेंट कंटिन्यूएंस इन वेल डूइंग सीक फॉर ग्लोरी एंड ऑनर एंड इमोर्टैलिटी कॉमा इटर्नल लाइफ, ऐसा आता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इमोर्टैलिटी जो प्राप्त करने वाले हैं ना, इनका और ये
यहाँ पे लाइक इटर्नल लाइफ टू दोज हु बाय पेशेंट कंटिन्यूअसली गुड सीट फॉर ग्लोरी और इमोर्टैलिटी।
ये भी बराबर ट्रांसलेशन नहीं है। आप केजेवी में आप जब पढ़ते हैं, अभी सिस्टर जी ने पढ़ लिया ये वचन से, इसको आता है खूब पेशेंट कंटिन्यूस इन वेल डूइंग सीक फॉर ग्लोरी ऑनर एंड इमोर्टैलिटी कॉमा इटर्नल लाइफ। इसका मतलब क्या है, इस खोज में जो झुंड चलते हैं, कौन से खोज, आदर महिमा और अमरता, इस खोज में जो झुंड जाता है और जो अमरता नहीं पाता है, समझ लिया ना, जो अमरता नहीं पाता है, जो महिमा वाले कलीसिया नहीं बन जाता है, एक सेकंड प्राइज है, वो सेकंड प्राइज है अनंत जीवन।
आदर महिमा अमरता नहीं पाएगा,
अनंत जीवन पाएगा। ये अभी हम पढ़ लेंगे, अभी हम पढ़ लेंगे, अभी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि दौड़ में जो दौड़ता ना, हर एक तो ये नहीं मिलता है।
दो प्राइस रखे हैं,
और वो भी कृपा, वो भी कृपा, एक्चुअली दूसरा प्राइस नहीं होना चाहिए, कृपा से, परमेश्वर का बड़ा कृपा है, बोला चलो तुमने भागा ना, आप काबिल नहीं है वो अमरता के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्सोलेशन प्राइज दूंगा, कॉन्सोलेशन प्राइज, तुम्हारे को सहानुभूति के लिए मैं दूंगा ये अनंत जीवन, अनंत जीवन। तो ये
तो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल भी है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल नहीं है।
तो ये बात तो पहला मैं ट्रांसलेशन में आपको दिखाया कि क्योंकि जो अमरता खोजता है ना, उसको अनंत जीवन देने में कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जो अमरत्वा नहीं मिलता है, खोज में गया लेकिन नहीं मिला, उसको एक कॉन्सोलेशन प्राइज है, ये अनंत जीवन। लेकिन ये क्या है, ये कौन सा झुंड है, अभी भी आगे बहुत कुछ हम पढ़ना है, उसके बाद हम समझ लेंगे। मैंने ये बात आपको सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि आपको जानना है कि ट्रांसलेशन का मिस्टेक है। तो पहला बात हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों को पीछा करते हैं, उनको दिया गया है जीवन, क्या है, अमरत्व जीवन, अमरता, अमरता जीवन का मतलब क्या है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन, दूसरा पहला अध्याय चौथा वचन, पहला अध्याय चौथा वचन,
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सलाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ।
ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी, ईश्वरीय स्वभाव का मतलब क्या है कि ये पहला सिर्फ परमेश्वर का स्वभाव है। ये तो हम पढ़ता है पहला तिमोथी 6:16, एकमात्र, पहला तिमोथियस 6:16,
और अमरता केवल उसी की है,
केवल उसी की है, मतलब शुरुआत में केवल सिर्फ पिता परमेश्वर के पास ही अमरता थे, लेकिन परमेश्वर के इच्छा जो करने उतरा, पहला कौन, उनके पुत्र, इतना तक परमेश्वर का इच्छा किया कि अपने जान का भी फिक्र नहीं किया, अपने सम्मान की भी फिक्र नहीं किया, अपने नाम को भी फिक्र नहीं किया, अपने शरीर को भी फिक्र नहीं किया। वाह वाह, कैसा बेटा है, इतना विश्वास करता मेरे, किसको देंगे, मैं अमरता देंगे, काबिल। ऐसा रास्ता अभी खुला है आपके लिए और हमारे लिए, क्या हम भी ऐसा मंजिल चलेंगे कि हमारा जान का भी फिक्र नहीं करेंगे, हमारा नाम को भी फिक्र नहीं करेंगे, हमारा सम्मान को भी फिक्र नहीं करेंगे, हमारा शरीर को भी फिक्र नहीं करेंगे मरते दम तक? अगर तुम और हम ऐसा करते हैं, हमको भी पिता परमेश्वर देगा वही अमृत। अमृत ये है, अमृता का इनाम ये है, स्वर्गीय बुलावट अमृता पाने के लिए यही है ऐश्वर्य, ईश्वरीय स्वभाव। ये बहुत ही धमाके वाले बात है, ये समझ भी नहीं पा रहे, लेकिन अगर वचन में नहीं लिखता हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें लिखा गया है। और भी थोड़े वचन पढ़ लो इस बात के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो दिया गया था, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वां वचन, प्रकाशित वाक्य पहला 18,
मैं मर गया था और अब देख मैं युवानुग जीता हूँ।
देखा, मैं मर गया था, मतलब मैं अमर नहीं था, मैं मरा, पहला मैं अमर नहीं था, लेकिन अभी इतने कोमलता से कह रहा है, कह सकता था कि मैं अभी अमर है, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह बोल रहा है अपने आप के बारे में, अपने आप के अमरता के बारे में इतने कोमल शब्दों से बात कर रहा है, बोलता है कि अभी मैं सदा के लिए जीवित हूं, सदा के लिए जीवित हूं, है ना?
पहले और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे
पास। नहीं, उससे पहले पढ़ लो।
मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीता हूँ।
युगानुग एक्चुअली क्या कहना चाहिए कि मैं अमर है, लेकिन इतना बड़े बड़े शब्दों इस्तेमाल नहीं करता है, इतने नीचा इतने कोमल शब्दों को इस्तेमाल करता है। युगान युग मैं जीवित हूँ है, मतलब अभी मैं मर नहीं सकता, मैं मरा था। वो अलग बात है। तो ये बात तो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप से ये जीवन के बारे में बात किया, योहन्ना 5वां अध्याय 26वां वचन, योहन्ना 5:26, योहन्ना 5:26।
क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवित रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया।
ये ऐश्वर्य स्वभाव ऐसा स्वभाव है जिसका जान बाहर से नहीं आता है। देखो, हमारा जान बाहर से आता है, खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, सांस को लेना पड़ता है, नींद में सोना पड़ता है, तभी जान जारी रहेगा। लेकिन ये ऐश्वर्य स्वभाव जो है ना, अंदरूनी है, बाहर आता है, अंदरूनी है। ये पिता परमेश्वर का अंदर है, लेकिन ये अंदरूनी स्वभाव अभी किसको दिया? प्रभु यीशु मसीह को। यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये अमर ऐश्वर्य स्वभाव, अंदरूनी स्वभाव, अंदरूनी जीने का स्वभाव ये दिया है प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो ये स्वभाव अभी किसको देने को परमेश्वर योजना रखा है? कलीसिया को, जो सुकर्म ढूंढते रहते हैं, जो सुकर्म लगातार करते रहते। देखो, इस दुनिया ऐसा खराब दुनिया है, ऐसा खराब दुनिया है, तुम अगर अच्छा करे थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। तुम जो अच्छा करता है तुम शख्स के नजर में देखते हैं, आपको मजाक उड़ाते हैं। तो अगर इस दुनिया में तुम अच्छा करने को निकलते हैं ना, जल्दी जल्द थक जाएगा। क्या फायदा है अच्छा करना? कोई अच्छा नहीं लगता है इस, बल्कि हमारा मजाक भी उड़ता है, उड़ाते हैं और थूकता भी है। कोई फिक्र नहीं करना है, आप अच्छा करने का मंजिल जो आप उतरा है ना, सिर्फ आपको जानता है, कोई और नहीं जानता ये मंजिल। चलते रहो, थूक लेते रहो, मजाक लेते रहो, इसलिए प्रभु बोला मैं ये मंजिल में चला, मैं फैला चला, मैं अच्छी तरह जानता ये मंजिल क्या है, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारे को पकड़ूंगा, मैं तुमको शक्ति दूंगा, चलो चलो। जो ये मंजिल में आगे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, हाँ हाँ बहुत गिरेंगे, उठना है, हाँ हाँ दोबारा गिरेंगे, उठना है, हाँ और एक बार गिरेंगे, उठना है, बार बार गिरेंगे, उठना है, उठ के चलना है, उठ के चलना है, उठ के चलना है। जो अंत तक मरते दम तक इस सुकर्म मार्ग में चलते हैं, उसको मिलेगा ये खोज, आदर, महिमा और अमरत्व। ये है वो इनाम, ये है वो इनाम जो रखा है इस कलीसिया के लिए, जो हम वचन में पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये ना सिर्फ ये इनाम है, ये जीवन जो अमरत्व जीवन, ये ना सिर्फ ये इनाम है। ये इनाम का एक और बात जो अभी हम पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन, दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन। परमेश्वर जो रखा है वो इनाम कलीसिया के लिए,
यह बात है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे।
देखो, तो अगर हम उनके साथ मरते हैं, हम उनके साथ जिएंगे। मतलब जो जीवन वो अभी रहे हैं ना, उसी जीवन जिएंगे। अगर हम सहते जाएंगे, क्या सहना? अभी अभी मैंने बोला मजाक, थूकना, अपमान, ये दुनिया के में जीते जीते, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले रहते रहते इस दुनिया में जीते जीते, अगर हम सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे, और भी बड़ा दुश्मनी है शैतान का दुश्मनी, सब अगर हम सहते रहे, वचन कहता है हम उनके साथ राज्य करेंगे। इसका मतलब ये सारे दुख जो हम सहते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते ही, इसमें कुछ ऐसा ज्ञान है जो जरूरी है राज्य करने के लिए। समझा मैंने मेरा बात? ये कुछ आम साधारण दुख उठाना नहीं है, ये ऐसा दुख उठाने की बातों है जिसमें हम बहुत गहरे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और उस गहरे ज्ञान से हम काबिल बन जाता है राज्य करने के। ये बहुत ही बड़ी बात है, आम साधारण बात नहीं है। ये दुख उठाते उठाते कुछ बहुत ही गहरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या है ये ज्ञान ब्रदर? ये मैं शब्दों से बता नहीं सकता, आप खुद ब खुद जब आप अनुभव करता है ये दुख, और खुद खुद जब ये दुख अनुभव करते हुए आप सहते जाते हैं ना, तभी आपको मालूम हो जाएगा ये अंदरूनी ज्ञान क्या है। और ये ज्ञान को प्राप्त करते 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 अगर आप मरते दम तक इस ज्ञान प्राप्त करते जाए, आप काबिल बन जाता है राज्य करने के। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह पहला ये रास्ता में गया, रास्ता में जाने के बाद अभी किधर पहुंचा? सिंहासन के ऊपर पहुंचा है। ये बात बताता है प्रकाशित वाक्य 3:21 वचन, प्रकाशित वाक्य 3:21।
जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया।
बुराई का दुनिया, अंधेरा दुनिया है, परमेश्वर का चेला बनना जय पाना है, जय पाना है। हर तरफ शत्रु, अंदर शरीर में शत्रु, हर तरफ शत्रु, लेकिन परमेश्वर साथ में है, बोलता है मैं तेरा साथ है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही हाथ जोड़ गया है ऐसा लगता है। क्या बोला? ऐसा लगता है, लेकिन ये सच्चा नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये ऐसा लगता कि अगर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा हाथ नहीं छूटा है तो जय पा सकता है। ये आम साधारण दौड़ नहीं है, सबके लिए नहीं है, ये उन विश्वासियों के लिए जो दिल से विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, जैसे प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह। तो उस तरीके से पिता का परिचय होना है, पिता का पहचान होना है, और पिता से दोस्ती करते करते पिता के आत्मा से भरना है, तब ही इस दुनिया में जय पा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह पहला वो दिखाया हमारे को वो आदर्श, और अभी हम को चला रहा है प्रभु यीशु मसीह। और इस रास्ता में चलते चलते हम काबिल बन जाएंगे दुनिया को राज करने के लिए, दुनिया को राज करने के लिए। ये बात तो हम वचन में भविष्यवाणी के रूप में पढ़ते हैं, दानियल की किताब 7वां अध्याय और 27वां वचन। दानियल की किताब 7वां अध्याय 27वां वचन।
राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी।
तो यहाँ जी पढ़ लो,
उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे।
तो यहाँ दिया गया है कि परम प्रधान के भक्तों, तो ये पवित्र पुराना नियम का एक भविष्यवाणी है जो बताता है कि कलीसिया को वह राज करने का मौका मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ। तो ये दो हिस्सा है ये नाम का, पहला हिस्सा है जीवन अमरत्व अमरता, दूसरा है कहता है कि राज करने का मौका। अभी इस इनाम इधर इधर इतना तक बोले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन या ना सिर्फ एक तीसरा हिस्सा है ये इनाम का। अब ये वचन पढ़ लेंगे गलातियों का किताब 3रा अध्याय 29वां वचन गलातियों 3:29।
और यह मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो।
तो इब्राहिम के वंश के प्रतिज्ञा के वारिस भी हो, इसका मतलब क्या है? इब्राहिम का प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? इब्राहिम का मतलब था क्या है? इब्राहिम पिता परमेश्वर का दोस्त, वचन में कहता है कि वो पिता परमेश्वर का दोस्त है। ये दोस्त के साथ पिता परमेश्वर एक प्रतिज्ञा बांधा था, और वो प्रतिज्ञा लगभग 4000 साल पहला किया, अभी तक वो प्रकट नहीं हो गया, अभी तक वो सच नहीं हो गया, अभी तक इंतजारी में है। इतना बड़ा प्रतिज्ञा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा वो सच होने वाला है, लेकिन आता भी नहीं हुआ, होने वाला है। उस प्रतिज्ञा का हिस्सेदार अगर हम बन जाए, आपको जानता है कितना बड़ा महिमा वो है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर इब्राहिम के साथ। इब्राहिम उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करके मरा, लेकिन वो प्रतिज्ञा इब्राहिम के जीते हुए दिनों में सच नहीं हुआ, लेकिन जब इब्राहिम जी उठेगा उस वक्त प्रकट हो जाएगा और सच हो जाएगा वो प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा के हिस्सेदार बना मौका हमारे को मिलेगा। उस प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के हिस्सेदार बनना कितना कितना बड़ा मौका है, क्योंकि वो वंश दो किस्म का होगा, एक तो आसमान के तारों के जैसे और दूसरा समुंदर के बालू के जैसे।
समंदर की रेत के तरह,
रेत के जैसे। तो ये है तीन हिस्सा ये इनाम के बारे में, कुछ समझा?
दिवाली पे जैसे
कुछ समझा, ये क्या बात है? बिल्कुल नहीं समझा, सचमुच हमने नहीं समझा, सचमुच बोले तो नहीं समझा। अमृता के बारे में क्या जानता है? कभी देखा है अमृता? राज करना प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के बारे में क्या जानता है? कभी बैठा है? सुना है? नहीं जानता। और तीसरा, इब्राहिम के साथ बांधा हुआ प्रतिज्ञा के हिस्सेदार बनना क्या जानता है? कुछ नहीं। इसलिए वचन बोलता है ये इनाम ना कान में सुना है, ना आंख में देखा है, और ना मनुष्य के हृदय में उत्पन्न भी हुआ है। ये इनाम इतना बड़ा है, इतना महिमा वाला है कि हम शब्दों में नहीं बता सकते। थोड़े शब्दों में बताया लेकिन पूरे तरीके से समझा नहीं सकता है। वचन में पढ़ ये बात जो पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय नवा वचन में बताया गया है। पहला कुरिन्थियों 2:9
9:24
चल तो जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वह ही है जो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है।
कितना प्रेम करेंगे परमेश्वर के ऊपर, कितना प्रेम करेंगे परमेश्वर के ऊपर? आपका सब कुछ चला गया तो परवाह नहीं परमेश्वर की? जितना प्रेम अगर आप परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं ना, परमेश्वर ये पुरस्कार रखा है। देखो मैं ये बात आपको कैसा बताऊं, अगर आप बहुत बड़ा रईस के घर में जाते हैं, मालूम बहुत बड़ा राज घर में जाते हैं ना, वो बहुत अमीर है, तो उसके अमीरी के अनुसार आपको इनाम देंगे, तोहफा देंगे, है कि नहीं? उसके अमीरी के अनुसार है कि नहीं? तो बहुत अमीर वाले घर में जाते हैं ना, वो जो देता है तोहफा, हमारा सिर हिल जाता है। ये क्या इतना बड़ा तोहफा? नहीं, ये सिर्फ मेरा छोटे सा तोहफा देंगे तुम्हारे
लिए। यहाँ पे शीतल इंडस्ट्रीज, उसके मालिक की बेटी की शादी थी, तो जितने सब शादी में आए थे सबको सेंट रोज मिली थी।
देखो एक उदाहरण, दुनिया का उदाहरण,
लेकिन वो तोहफा भी नथिंग है परमेश्वर की।
अरे भाई हाँ, ये शी 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 उतना ही बोलेंगे, शीतल भी नहीं बोलेंगे, ये शी 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 इतना बड़ा उदाहरण, कुछ भी नहीं है ये सारा जगत का मालिक के सामने, ये सारे जगत का मालिक के सामने क्या है? और ये सारे जगत का मालिक कहता है जो मेरे ऊपर इतना प्रेम करते हैं कि आपके जान भी चले जाए, आपके नाम भी चले जाए, आपके खानदान भी चले जाए, आपके शरीर भी चले जाए, आपके इच्छा भी चले जाए, आप फिक्र नहीं करते क्योंकि आप मेरे ऊपर इतना प्रेम रखते हैं। तुम्हारे लिए मैं रखा हुआ इनाम ये है कि आपके आंग भी नहीं देखा है, आपके कान में भी नहीं सुना है, और ना ही तेरे दिल में उत्पन्न किया है। ये क्या बात जो परमेश्वर रखा है? लेकिन क्या है, इतना प्रेम करने के लिए शैतान नहीं छोड़ेगा, शैतान नहीं छोड़ेगा। ये शरीर जो है ना, पुराना शरीर, पुराना इच्छा, वो नहीं छोड़ेगा, और हमारा रिश्तेदार जो है ना दुनिया, वो नहीं छोड़ेगा। ये सबको जय पाना है, सबको जय पाना है। तीन शत्रु है, अंदर एक शत्रु है पुराना स्वभाव, बाहर एक शत्रु है दुनिया, रिश्तेदार, दोस्त, काम करने वाले, और अनदेखी एक शत्रु है शैतान, नहीं छोड़ेगा परमेश्वर के ऊपर इतना प्रेम करने के लिए नहीं छोड़ेगा। इन तीनों को क्रॉस करना है। जब ये तीनों को आप पार करता है, ये वचन कहता है जब तुम जय पाओ
नहीं
नहीं नहीं ये अलग है, ये अलग
है। तीन बहुत अच्छा आएगा, तीन संसार है,
बहुत 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 तीन तीन बात है। लेकिन ये ब्रदर जी, ये है चुने हुए वालों के लिए परमेश्वर रखा है ये इनाम, और ये इनाम वो पाने के लिए अभी हम एक दौड़ दौड़ते हैं। वचन में पढ़ते हैं फिलिपियों के किताब का अध्याय 13 और 14 वचन, फिलिपियों के किताब 3:13-14, फिलिपियंस 3:13-14।
हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह रही हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा।
13 और 14 दो वचन से सर,
निशानी की ओर दौड़ा चला है ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
तो ये एक दौड़ है, इसके लिए एक निशान है, हमारे लिए एक इनाम है और हम दौड़ना है। दौड़ क्यों बोला है? दौड़, अगर कोई दौड़ता है कैसे दौड़ता है? एक एक निशान को देखता है कि ये वो मंजिल तक पहुंचना है, और उसके लिए रखा है एक इनाम। कोई दौड़ने वाला आपने देखा है? ऐसा कोई दौड़ने वाला देखा है? ऐसा कोई दौड़ने वाला कभी नहीं जीता, वो दौड़ने के लिए काबिल भी नहीं है। जो दौड़ता है ना, इधर उधर नजर भी नहीं देखता, सिर्फ मंजिल देखता है, मैं उधर पहुंचना है। तो ये हमारा मसीह का जिंदगी महिमा वाला बुलावा दौड़ के हैसियत में बोला गया है। हाँ, बहुत सारे चीज हमको खींचेंगे इधर देखने के लिए उधर देखने के लिए, लेकिन जो जीतने वाला है ना, वो जानता है सिर्फ एक ही मकाम, एक ही मंजिल, और दौड़ेगा। इसलिए पौलुस ने दौड़ कहा यहाँ। हमारा मसीह का जिंदगी है एक दौड़ की तरह जीना है, दौड़ की तरह मालूम ना, सिर्फ एक ही मंजिल देखना है, सिर्फ एक ही निशान देखना है, और सिर्फ एक ही निशान की तरफ पहुंचना है और बढ़ना है। तो यही है, एक दौड़ का उदाहरण दिया गया है। ये दौड़ शुरू होता है जब ये वाचा हम बांधते हैं, ये दौड़ शुरू होता है जब ये वाचा बांधने के बाद हम यीशु मसीह के कदमों का पीछे करने वाले बन जाते हैं। अभी इस दौड़ में वचन कहता है कि सिर्फ थोड़े लोग जीतेंगे, जीतने वाले जैसे दौड़ करके पौलुस कहता है। वचन पढ़ लेंगे अभी, 1 कुरिन्थियों 9:24 वचन, 1 कुरिन्थियों 9:24।
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो।
जीतने वाले जैसे दौड़ो, दौड़ने वाले मत दौड़ो। बहुत लोग दौड़ते हैं एक दौड़ में, लेकिन सिर्फ एक ही स्वर्ण पदक को मिलता है। स्वर्ण पदक जी वाले जैसे दौड़ो, लेकिन शैतान बोलेगा तुम स्वर्ण अपने आप आईना में अपने शक्ल का भी देखा है? शैतान पूछेगा बोलेगा जब हम नहीं रहता ना, जब अकेले रहता ना आपके कान में बोलेगा तुम मसीह के दौड़। लेकिन तब आप याद रखो, एक बात याद रखो, अगर आपको काबिल नहीं है तो परमेश्वर आपको बुलाता भी नहीं, आपको बुलाता भी नहीं, क्योंकि शैतान धोखा करता है, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं करता है। अगर परमेश्वर आपको बुलाया है, इसका मतलब है आपको कर सकता है, आपको काबिलियत है, लेकिन शक आपके अंदर ही आएगा, परमेश्वर के अंदर कोई शक नहीं है। अगर शक आपके अंदर आ जाता है, हार तभी हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के अंदर कोई शक नहीं, आपको अपनाते हैं और आपको बुलाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि परमेश्वर के पास शक नहीं है, लेकिन आपके अंदर शक पैदा हो जाता है, तो आपके अंदर जब शक पैदा हो जाता है क्या करना है,
कैसे
जीतोगे, कैसे जीतोगे? तो इसलिए बोलता है दौड़ना, लेकिन ऐसा नहीं दौड़ना साधारण दौड़ने वाला, स्वर्ण पदक जीतने वाला जैसा दौड़ो। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, शुरू से आपके साथ है, अंत तक आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर धोखा करने वाला नहीं, लेकिन आमने सामने सभी धोखे करने वाले हैं जो शैतान खड़ा की किया हमारे को मोह माया दिखाने के लिए। मोह माया जानते हैं ना, मोहिनी जैसा दिखेगी, लेकिन जाके छुया तो हाथ में कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, इतना सुंदर से दिखा, पकड़ने को गया, हाथ में मोह माया, मोह माया। ये है ये दौड़, इस मोह माया में सचमुच ये सारा दुनिया वाले भी परमेश्वर बचाने वाला है, हजार साल में इस मोह माया में नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन अभी हमारे को बहुत ऊंचा बुलावा को बुलाते वक्त पहले मौका दिया है इस मोह माया दुनिया से छुटकारा होके जीत पाने के लिए। लेकिन विश्वास होना चाहिए, मंजिल होना चाहिए, निशान होना चाहिए, और जीतने का उम्मीद होना चाहिए। शक नहीं आना है, शक नहीं आना है, बेशक होना है, बेशक। परमेश्वर के अंदर कोई शक नहीं है, हमारे अंदर पैदा होता है शक। तो ये है ये बहुत बड़ा दौड़। पौलुस बोलता है दौड़ ऐसा दौड़ना है जो जीतेगा। लेकिन वचन में हम पढ़ा है और असल ही हम जानता है, इस दौड़ में दो झुंड होगा, एक तो जीतने वाला झुंड है और एक जो नहीं जीतेगा, मतलब जो जो अपने अंदर शक लाएगा और वो नहीं जीतेगा, जो वफादार से थोड़ा कम हो जाएगा। एक तो वफादार है और एक तो वफादार से थोड़ा कम। ये वफादारी की बात जो है ना, हर घंटा हर पल स्थापित करना है, हर घंटा हर पल, क्योंकि हमारा जीना, हमारा जीवन ही ऐसा ना, हर घंटा हर पल कोई ना कोई नया चीज होते जाते हैं ना, हर एक पल हर एक घंटा, तो उसके साथ साथ हमारा वफादारी भी स्थापित करना है। तो इसके बीच में प्रकट होता है दो झुंड, एक झुंड जो ऊपरी झुंड है, छोटा झुंड है, उधर बापसा में दिया है ना, ये कलीसिया का दिव्य योजना के चार्ट में हम देखता है, ये छोटा सा बक्सा जो ऊपर, ये छोटा सा बक्सा देखो, ये छोटा सा बक्सा जो ऊपर है ना, सबसे ऊपर उसका उसको एन, छोटा एन उसके अंदर है, वो छोटा सा बक्सा है वफादार झुंड। उसके नीचे एक छोटा बड़ा सा बक्सा है ना एम, ये एम जो है वफादारी से कम, बेवफा नहीं,
थोड़ा
बेवफा नहीं, बेवफा भी एक झुंड है, बेवफा भी एक झुंड है, ये वफादारी से थोड़ा कम, ये बड़ा बक्सा है। तो अभी हम पढ़ लेंगे वचन से और मालूम हो जाएंगे ये छोटा बक्सा झुंड वाले कौन है, और उसके बाद हम देख लेंगे ये बड़ा बक्सा झुंड वाले कौन है। अभी ये छोटा बक्सा जो वफादार झुंड है, इसके बारे में वचन में पढ़ते हैं मत्ती 24वां अध्याय 13वां वचन, मत्ती 24:13।
तो जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा।
हाँ, अंत तक धीरज दिखाना है। इस अंत तक धीरज दिखाने झुंड के नाम हम पढ़ते हैं लूक के किताब, लूका 12वां अध्याय 32वां वचन। लूक के किताब 12वां अध्याय 32वां वचन।
हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया है तुम्हें राज्य
देगा।
पढ़ लीजिए।
हे छोटे मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे।
तो ये है वो अंत में महिमा वाला कलीसिया, उसके बारे में क्या दिया है, छोटे चुन
छोटे
चुने वाले कलीसिया, ये है वो फाइनल फिल्टर, जैसा आप लोग बोलते हैं ना फिल्टर बोलते हैं ना, तो ये फाइनल फिल्टर से प्योर प्रकट होने वाला छोटे झुंड। ये छोटे झुंड के बारे में हम दोबारा पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में दो वचन में, प्रकाशित वाक्य छवां अध्याय पहला वचन, प्रकाशित वाक्य।
फिर मैंने दृष्टि की ओर देखा, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ एक लाख
44,000
जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है।
तो ये देखो, ये वचन भविष्यवाणी वचन है, कहता है कि मेमना के साथ है। वहाँ हमने पढ़ा ना, आपको याद होगा 17वां अध्याय में हमने पढ़ा, वहाँ मेमना के साथ बुलाए हुए चुने हुए और वफादार था ना, लेकिन यहाँ कहता है कि उनके साथ है 144,000 ये 144,000 कौन है, ये 144,000 है अंत में संख्या जो छोटे बन जाएगा, अंत में जो संख्या जो बन जाएगा पर प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, अंत में वो संख्या जो अंत में बन जा कलीसिया महिमा में
300 करोड़
ये इतना ही 144,000 ये 144,000 के बारे में वचन में बहुत सारा गलत शिक्षा भी हो गया है, क्योंकि ये 144,000 के बारे में सिर्फ दो ही वचन में पढ़ता है। यहाँ तो हम पढ़ता है ये प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय पहला वचन, और दोबारा पढ़ता है प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 4 से लेकर 8वां वचन तक, 7वां अध्याय 4 से लेकर 8वां वचन तक।
जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतान के सब गोत्रों में से 1,24,000 पर
44,000 वाकई तो कम है, और भी कम किया तो और भी क्या ब्रदर जी, और वाकई तो कम, और भी आप अगर आप कम कर दिए तो हाल तो बहुत बुरा हो गया ना। पढ़ लो
44,000
जी 44,000 पढ़ लो।
यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूपेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, असेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनसेहा के गोत्र में 12,000 पर, सिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्कार के गोत्र में से 12,000 पर, जबलून के गोत्र में से 12,000 पर, और यीशु के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई।
तो यहाँ देखो ये वचन भी बताता है 144,000 दो जगह में हम पढ़ते, एक तो हमने पढ़ा 14वां अध्याय और पहला वचन, और दूसरा हम पढ़ता है इधर 7वां अध्याय 4 से लेकर 8 तक है। बहुत सारे मसीहों के बीच में शिक्षा ये देता है कि ये 144,000 ये मसीह ही नहीं है, ये यहूदियों हैं, क्योंकि यहाँ तो इसराइल के 12 जुंडों का नाम दिया गया है, और 12 जुंडों से 12,000 का पद दिया गया, तो इसलिए कहता है ये मसीह ही नहीं है, ये कलीसिया नहीं है, ये यहूदियों का संख्या है। लेकिन आज हम बताएंगे
144,000
नहीं, इस वचन 7वां अध्याय के पढ़ते हुए ये 12 इसराइली के झुंड गलत शिक्षा फैलता है।
जब आप किसी से बात करो ना, तो किसी पास्टर से, तो वो बोलते हैं ये कलीसिया की गिनती नहीं है, ये इसराइलियों की गिनती है, कि कलीसिया में इसराइली इतने होंगे।
तो ये बात को हम क्या बोलो, ये बात के बारे में हम वचन में हम पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। पहला हम पढ़ लेंगे यही प्रकाशित वाक्य में 7वां अध्याय 4 से लेकर 8 तक, पहला हम पढ़ लेंगे ये प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 4 से लेकर 8 तक। अभी आपने पढ़ लिया, देखा है यहाँ ये 144,000 ये 144,000 के संख्या ये गिनती में बंटवारा है 12 झुंड, 12 जुंड और 12 जुंड एक एक जुंड के लिए 12,000 पद कुल मिला के 144,000। लेकिन लोग क्या कहता है कि ये इसराइल के 12 जुंड है। लेकिन आप अगर आप बहुत गौर से देखा जाए वो 12 जुंड के नाम अगर आप गौर से देखा जाए आप एक बात पता करेंगे कि इसराइल के 12 जुंड अर्थात याकूब के 12 पुत्र का नाम जो हम उत्पत्ति के किताब में 49वां अध्याय में हम पढ़ते हैं जब याकूब मर रहा था एक एक पुत्र को बुला के उनके सर के ऊपर हाथ लगा के आशीर्वाद बोला और वहां तो 12 पुत्र का नाम मिलते हैं। यहाँ का 12 जुंड का नाम जो हम पढ़ते हैं यहाँ 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य यहाँ हम देखता है उन 12 पुत्रों में से एक पुत्र हटाया गया है। उस 12 पुत्र जो दिया गया था जो जिसका नाम हम पढ़ते हैं 49वां अध्याय उत्पत्ति के किताब में दान का नाम इधर नहीं दिया है। किधर? 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य डैन नहीं आता इधर। डैन के बदले आता है मनसा। मनसेहा जो है असल में याकूब का 12 पुत्र नहीं है बल्कि वो यूसुफ का पुत्र है। मनसेहा यूसुफ का पुत्र है वो 12 पुत्र का संख्या में नहीं है। तो यहां 12 कैसा बना? क्योंकि डैन इधर से हटा दिया गया है। डैन इधर से हटा दिया गया है इसलिए 11 बचा। 11 को 12 बनने के लिए मनसेहा अंदर लाया है। लेकिन असल में ऐसा स्थिति इसमें नहीं हुआ। असल में इसराइल के इतिहास में अगर हम पढ़ा जाए वहां तो नहीं ऐसा नहीं हुआ। डैन तो हटाया नहीं और डैन का स्थान मनसेहा नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझना है प्रकाशित वाक्य एक आम साधारण किताब नहीं है। प्रकाशित वाक्य एक चिन्ह बड़ा हुआ किताब है। तो चिन्ह के द्वारा कोई बात इधर बता रहा है। समझा? चिन्ह के द्वारा कोई बात इधर बता रहा है। पहला बात आपको समझना है कि इज़राइल 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 नाम जो आता है परमेश्वर के वचन ये वो इसराइल नहीं है। शारीरिक इसराइल जरूर बहुत सारे जगह जहां विश्व इसराइल का नाम आता है वो ही इसराइली है। लेकिन हर एक जगह जो वचन में इज़राइल है वो इसराइल नहीं है। आज मैं आपके सामने एक दूसरा इसराइल प्रकट करेंगे वचन से। एक दूसरा इसराइल क्या जानकर आज आप प्राप्त करेंगे वो इसराइल अभी वचन में पढ़ लो। गलातियों की किताब 6 अध्याय 15 और 16। गलातियों की किताब 6 अध्याय 15 और 16। 6 का 15 16। गैलेशियन 6:5 and 15 and 16। 15 और 16।
क्योंकि न खातना और न खातना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी।
देखो जो नया सृष्टि बन जाता है वो परमेश्वर का इज़राइल बन जाता है। परमेश्वर का इज़राइल अलग शारीरिक इज़राइल अलग। समझ गया? परमेश्वर का इज़राइल अलग वो आत्मिक इज़राइल और शारीरिक इज़राइल अलग। अभी ये आत्मिक इज़राइल कलीसिया है। ये परमेश्वर का इज़राइल कलीसिया है। तो आपको याद होगा
तो शारीरिक इज़राइल से वही है यहूदी और सारे लोग।
यस यस जो इब्राहिम के बच्चे हैं वो शारीरिक इज़राइल है। लेकिन ये आत्मिक इज़राइल और परमेश्वर का इज़राइल ये मसीही है। और हर एक मसीह नहीं है जो नए सृष्टि बन जाते हैं। जो नए सृष्टि बन जाते हैं ना वो आत्मिक इज़राइल बन जाता है। वो परमेश्वर इज़राइल बन जाता है। और बहुत सारे बात है जो ब्रदर जी अगले भाग तीसरे भाग में आपको गहरे रूप में बताएंगे कि ये इसराइल का नाम कैसा आया। कि रात भर याकूब कुश्ती करने लगा एक स्वर्गदूत के साथ। कुश्ती किया और सुबह सुबह होते हुए ये कुश्ती खत्म हुआ और उस वक्त स्वर्गदूत बोला, देखो यार पूरे रात तुम हमारे साथ कुश्ती किया है, आज से आपका नाम याकूब नहीं है, आज से आपका नाम है इसराइल। इसराइल का मतलब क्या है ब्रदर बताएगा तीसरे भाग में, सारा लेसन मैं नहीं लेना है, ब्रदर लेंगे और बताएगा सारे बात क्या है। लेकिन आज हम देखेंगे कि एक दूसरा इसराइल है जो परमेश्वर का इसराइल कह जाते हैं, और ये परमेश्वर का इसराइल है, आत्मिक इसराइल है। बताइए
वो जो नाम इसराइल दिया था वो दूत ने दिया था, वो लड़ रहा था जो याकूब से ना,
वो फैक्ट नेक्स्ट क्लास तीसरा क्लास में आप मिलेगा। तो अभी अभी हम देखते हैं कि शारीरिक इसराइल को उत्पन्न होते वक्त 12 पुत्र से बन गया 12 झुंड है ना, 12 पुत्र से बन गया 12 झुंड को कभी शारीरिक इसराइल। आत्मिक इसराइल भी शुरू हुआ 12 चेलों से, 12 अपोस्टल से, और 12 अपोस्टल से बन गया है 12 झुंड। आपको याद है 12 झुंड का खास स्थान क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और अपने महिमा के सिंहासन पे बैठेगा, आप भी 12 सिंहासनों पर बैठेंगे और सारा इसराइल के लोग का न्याय करेंगे, है कि नहीं? बोला था कहा मत्ती 19वां अध्याय 28वां वचन, मत्ती 19:28
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो बाहर में सिंहासन पर बैठकर इसराइल के
सारे
गोत्रों का।
तो जैसे जैसे वहाँ 12 पुत्र बन गया 12 झुंड, यहाँ 12 चेला बन गया 12 सिंहासन। सिंहासन को 12,000 दिया गया। चलो वो बहुत गहरा है, हम अभी सिर्फ परिचय कर रहे हैं, बहुत गहरा ये सारी बातें। अभी ये 12 चेले का चिन्ह यहाँ प्रकाशित वाक्य के किताब में याकूब के 12 पुत्रों में हम देख रहे हैं। दान का नाम का हटा दिया गया और मनसेहा आया, इसका मतलब है 12 चेलों में से एक तो हटा दिया गया, कोई बोलना नहीं, नया वाले तो बोलना है, तो एक चेले को हटा दिया गया और एक चेले के स्थान में एक और आ गया। कौन सा चेला हटा दिया गया?
दान,
नहीं नहीं दान छोड़ो, दान तो चिन्ह है,
यीशु
मसीह के चेलों में से एक चेला हटा दिया गया था। तो करंट चल रहा है अभी, तो करंट चल रहा है। तो यहाँ कौन हटा गया था? यहूदा, यूदा इस्कारियोत, जो धोखेदार, ये 12 चेलों में से था। अभी ये चेला धोखेदार बना, अभी इस चेला को हटने के बाद आपको याद है इन लोगों चीटी बन लगाया एक 12वां चेला लेने के लिए, चिट्टी लगाया। ये चिट्टी का बात हम वचन में पढ़ेंगे, अभी प्रेरितों के काम पढ़ेंगे ये चिट्टी का बात, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 20।
भजन संहिता में लिखा है उसका घर उजाड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले।
उसका पद कोई दूसरा ले ले।
इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, साथ यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे,
पढ़ लो 26 तक,
उचित है कि उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यीशु को जो बरसवा कहलाता है जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मसीहा को और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन्हों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया।
तो देखो 12 प्रेरितों से बन गया 11 प्रेरितों, 12वां स्थान को लेने के लिए दो चेले से एक चुन लेते हैं चिट्ठी के जरिए से, एक का नाम है मत्तियाह और एक का नाम है यूस्तुस। इन यूस्तुस और मत्तियाह के बीच में टी गिरता है मत्तियाह के नाम में। क्या ये चुनाव परमेश्वर अपनाया? आप सोच रहे ब्रदर हम अभी भी वचन पढ़ा, कोई कहानी नहीं पढ़ा, तो क्या सवाल पूछ रहा है? मैं सवाल पूछ रहा है कि ये चुनाव जो अभी वचन में आपने पढ़ा है, क्या परमेश्वर ने अपनाया? क्या यूदास के स्थान में क्या मत्तियाह 12वां प्रेरक बना? अच्छी बात है, ये यही तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात अभी ने बोला, अभी प्रभु के आत्मा से भरे हुए, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात है। हाँ हाँ या ना, सिर्फ दो शब्द है, जब ना हाँ नहीं बनता है। देखो 12 चेलो, 12 प्रेरिता और एक का था यूदास इस्कारियोत। यूदास इस्कारियोत ने हमारा मालिक को 30 चांदी के सिकले बेचा गया था और धोखा किया था, और ये आदमी बाद में पछतावा होके अपने आप को, अपने आप का जान लेके आत्महत्या कर गया। ये है यूदास इस्कारियोत। लेकिन ये यूदास इस्कारियोत का पद बहुत पवित्र था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ 12 प्रेरित है, सिर्फ 12, ना 13 ना 11। तो ये 11 जब बन गया, अभी 12वां लाना है। अभी 12वां लाने के लिए ये बाकी के 11 प्रेरितों और बाकी के चेलों के साथ एक प्रेयर मीटिंग रख के प्रार्थना से शुरू होके ये चिट्ठी का काम किया। चिट्ठी कर दिया, और चिट्ठी में मत्तियाह के नाम में गिरा, और मत्तियाह अभी 12वां बन गया। लेकिन क्या परमेश्वर अपनाया ये चुनाव? लेकिन वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ये चुनाव नहीं अपनाया, क्योंकि उस वक्त इन चेलों और उन 11 प्रेरितों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। क्योंकि दूसरा अध्याय में पेंटिकॉस्ट आता है और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, तो बिना पवित्र आत्मा से प्रार्थना के साथ ही उसी तरह आज भी बहुत सारा प्रार्थना सभा होता है, लेकिन क्या पवित्र के साथ होता है? ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि प्रार्थना से जमता नहीं है बात, पवित्र आत्मा साथ होना चाहिए, और पवित्र आत्मा के साथ ही सही निर्णय, सही फैसला और सही काम होता है। तो यहाँ हमने देखता है कि ये चुनाव जो ये 11 प्रेरितों करते हैं, ये परमेश्वर का चुनाव नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने ये 12 तो चुन लिया, पूरे रात वो भाड़ में जाके पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहा पूरा रात। सुबह में उतर के परमेश्वर के सलाह के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ चुनता है ये बारह। वचन में पढ़ लो लूका के किताब 6 अध्याय 12 और 13 वचन। लूका के किताब 6 अध्याय 12 और 13 वचन।
उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा।
देखो ये प्रेरित है, सिर्फ 12 प्रेरित है,
चेले बहुत है, प्रेरित
चेले बहुत है, प्रेरित तो सिर्फ 12 है। अभी क्या हो गया कि इन 12 प्रेरितों में से एक तो गिर गया, एक तो अपना स्थान चला गया, अभी इनका स्थान लेने के क्या करता है ये बाकी छह लोगों और बाकी ग्यारह प्रेरित, ये चिट्ठी लगाते हैं और चिट्ठी से चुन लेता है मतियास। लेकिन ये परमेश्वर का योजना नहीं है और ना ही ये प्रेरित चुनने का तरीका। प्रेरित चुनने का तरीका चाहिए पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। एक प्रेरित का चुनाव आपको चाहिए दो वोट परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह। और बारवां चेला कौन बना, ये एक बंदा अपने चिट्ठी में लिखता है। पढ़ो अभी पहला कुरिन्थियों नवा अध्याय, पहला कुरिन्थियों नवा अध्याय एक और दूसरा वचन।
मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं सुरक्षित नहीं, क्या मैं यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम सुख में मेरे बनाए हुए नहीं, यदि मैं दूसरों के
पढ़ लो
लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम
देखो प्रेरित क्या मैं प्रेरित नहीं, कौन पूछ रहा है, पौलुस। पौलुस ये पौलुस नाम था साउल, शाउल, शाउल मसीहों का विरोधी था। ये जा रहा था मसीहों को लाने के लिए, उनको तंग करने के लिए। वो जेरूसलम से लेकर दमास्कुस को जा रहा था। जाने के रास्ते में उसके एक अनुभव हुआ, वो प्रभु को मिलता है और प्रभु को मिलने के बाद प्रभु एक बात बताता इनके बारे में। वचन में पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम नवा अध्याय पंद्रहवा वचन, प्रेरितों के काम 9:15। हाँ 9:15।
परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है।
मेरा चुना हुआ पात्र है, इसका मतलब है शाऊल बन गया था बारवां प्रेरित। ये सर्टिफिकेट देता है पौल, पौल ही देता है ये सर्टिफिकेट गलातियों के किताब में, गलातियों पहला अध्याय पहला वचन, गलातियों पहला अध्याय पहला वचन।
पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरना यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा।
आगे दो वोट ये बहुत ही अहम वोट है, परमेश्वर के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा। पढ़ लो
जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है और सारे भाइयों की ओर से।
तो कैसा है, पिता परमेश्वर से चुना हुआ और प्रभु यीशु मसीह के चुना हुआ। और शुरू में क्या बोलता है, ना ना, आगे पढ़ लो दोबारा पहला अध्याय पहला वचन।
पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से,
मनुष्य की ओर की मतलब क्या है, वो ग्यारह प्रेरितों जो चुनाव किया ना, वो मनुष्य की ओर से चुना हुआ मतिया। और दूसरा,
और ना मनुष्य के द्वारा,
मनुष्य का द्वारा का मतलब चीटी, मनुष्य की ओर का मतलब वो ग्यारह केले, और मनुष्य के द्वारा का मतलब चीटी के द्वारा, उस तरीका जो इस्तेमाल किया। वो ना हम मनुष्य का की ओर से हमारा चुनाव हुआ और ना ही मनुष्य के तरीके से हमारा चुनाव हुआ, बल्कि हमारा चुनाव हुआ प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु यीशु मसीह के पिता जो प्रभु यीशु मसीह को जिलाया मौत से, मतलब पिता परमेश्वर चुनाव हुआ प्रेरित है। तो ये वचन साफ साफ बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया शाऊल बारह चेला और वहां चेला बनने के लिए, बारवां प्रेरित बनने के लिए। तो बारवां प्रेरित बनने के बाद बहुत सारे कलीसियाओं में भी शक था, इसलिए ये पहला कुरिन्थियों के कलीसिया में खत लिखते वक्त पौलुस कहता है क्या मैं प्रेरित नहीं हूं, दूसरों के लिए अगर मैं प्रेरित, दूसरों का मतलब क्या है, दुनिया नहीं, दूसरों कलीसियाओं के लिए मैं प्रेरित नहीं रहा तो परवाह नहीं, क्या हम आपके लिए प्रेरित नहीं है, अपने नहीं नहीं इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने चुनाव ये किया एक तुतुरी को लेके बजा के, ये नहीं कहा कि आज मैं यूदास के स्थान में इनके स्थान में मैं चुन लेते हैं शाऊल, जिनका नाम आगे से हो जाएगा पौलुस, ऐसा नहीं था। चुपचाप ये काम हुआ, चुपचाप चुपचाप से ये नहीं, आम साधारण से काम हुआ। और होने के बाद देखता है कि तोड़े कलीसियाओं तक आ गया और बोलने लगा, नहीं कौन बोला तुम प्रेरित है, कौन बोला तुम प्रभु के चुना हुआ है, हम नहीं मानते कि तुम प्रेरित है। इसलिए वो वचन में बात कर कहता है, दोबारा पढ़ लो पहला कुरिन्थियों नवा अध्याय एक और दो, पहला कुरिन्थियों नवा अध्याय एक और दो। देखो क्या क्या मैं दूसरों के लिए ना सही, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रेरित नहीं हूँ? तो इसका मतलब ऐसा था कि बहुत कलीसियाओं नहीं मानते थे कि पौलुस बारवा चेला, बारवा प्रेरित। आज भी बहुत सारे चर्चों में मानता नहीं है कि पौलुस बारवा प्रेरित है, कहता है मसीहा। और थोड़े लोग कहता है 13, 14, 15 और हम भी प्रेरित है। आजकल बोल रहा है मैं प्रेरित हूं, बोल रहा है मैं अफ्रीका में गया, एक आदमी बंदा बोला मैं प्रेरित हूं, अपोसल अपोसल एलियास बोला। मैं चाहूं गया, मैं बोला ब्रदर जी सिर्फ 12 प्रेरित है, सिर्फ 12, ना 11 है ना 13 है, सिर्फ 12 है। तो ये 12 का नंबर बनने के लिए, इसलिए कि वो 11 हो गया, चुनाव हुआ और शाऊल गया 12वां प्रेरित, जिनका नाम बदल गया पौलुस। तो ये बात वचन के अंदर, यहां थोड़ा वहां थोड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे उन दिनों में कलीसिया नहीं माना, अभी भी नहीं मान रहा है, अभी भी नहीं मान रहा है। उस वक्त भी उलझन था कुरिन्थियों के कलीसिया के पास खत लिखते वक्त पौलुस कहता है ऐसा उलझन है, बहुत सारे कलीसिया मेरे को अपनाता नहीं है, मेरे को मानता नहीं है। उसी तरह आज भी बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे क्रिश्चियंस मानता नहीं है कि पौलुस ही 12वां प्रेरित है। तो अगर ये बात तो परमेश्वर हमारे को बता दिया है, और ये बात से हम अभी मालूम हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे प्रेरितों में से एक तो गिर गया और उनका स्थान लिया था एक दूसरा। तो ये बात चिन्ह वाला किताब प्रकाशित वाक्य ये बात बताते हुए हम देखता है कि याकूब के 12 पुत्रों के नाम देते हुए उसमें दान नाम का एक पुत्र हटा के उसके स्थान लेता है एक एक बंदा जो 12 याकूब के पुत्रों नहीं था। तो दान के जगह में आता है मनसेहा। तो मनसेहा, इसलिए मनसेहा उधर आता है, हमको अच्छी तरह जानता है कि ये लिस्ट जो दिया है अगर 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, ये शारीरिक इज़राइल नहीं है, नहीं ये शारीरिक इज़राइल नहीं है, क्योंकि शारीरिक इज़राइल में मनसेहा नहीं है एक झुंड। हम मालूम हो गया कि ये शारीरिक इज़राइल नहीं है, ये आत्मिक इज़राइल है। ये 12 प्रेरितों की बात है, 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित हटाया दिया गया था और उसका जगह उसका स्थान लिया था एक और मनसेहा। मनसेहा जैसा मनसेहा याकूब का पुत्र नहीं था, उसी तरह पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल नहीं था, नहीं था।
परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ था,
यस,
तो लोगों को सताता
था, यस। तो ये बात यहाँ चिन्ह के द्वारा यहाँ दिया गया है। तो ये बात तो बहुत अच्छी तरह यहाँ दिया गया है। आखिरी सवाल ये है कि डैन का हटाने का मतलब क्या है? डैन यूदास के समान कैसा बन गया है? डैन के अंदर बात क्या है? डैन के बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के किताब 49वां अध्याय 16 और 17वां वचन। उत्पत्ति के किताब 49वां अध्याय 16-17वां वचन।
दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में एक सांप और एक रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है।
हाँ, बहुत बात इस तक दिया गया है डैन के बारे में। अगले क्लास में ब्रदर जी ये बात आपको बताएंगे कि ये इसका आत्मिक मतलब क्या है। इसमें से हम ये मालूम कर सकता है कि डैन एक धोखेदार है। डैन एक धोखेदार है,
जैसे कि और उसने सब कुछ किया वैसे ही है ना,
जैसे यूदास ने किया, जैसे यूदास किया उसी तरह इधर दिखाया गया है डैन। तो डैन अभी एक चिन्ह बन गया यूदास का। जैसे यूदास एक धोखेदार था और धोखा किया, उसी तरह डैन के बारे में यहाँ बोलता है कि ये धोखेदार है और धोखा करता है। लेकिन इसका और भी विस्तृत जानकारी, इसका डिटेल ब्रदर बताएगा अगले क्लास तीसरे भाग में, ये बात आपको समझ जाएंगे। तो ये इस बातचीत में हम मालूम हो गया है कि प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का दिया गया 1,44,000, वहाँ दिया गया 12 झुंड, वहाँ दिया गया 12,000 एक एक झुंड का पद, ये शारीरिक इज़राइल की बात नहीं है, ये आत्मिक इज़राइल की बात है, ये कलीसिया की बात है। ये महिमा वाला कलीसिया में बताता है कि 12 प्रेरित होंगे और 12 प्रेरित में एक प्रेरित के स्थान एक और लेंगे और 12 प्रेरित बन जाएगा 12 सिंहासन और 12 सिंहासन के पीछे होंगे 12,000 पद और ऐसा बन जाएगा 1,44,000 महिमा वाला कलीसिया। तो यहाँ तो शारीरिक इज़राइल के लिए स्थान नहीं है। दूसरे जहाँ 1,44,000 आता है वो है प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 4वां वचन। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 4वां वचन 14:4।
ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं।
हाँ, ये दूसरा वचन 44,000 के बारे में कहता है। ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं होता है, ये कुंवारियों हैं। ये वचन भी हम देखते हैं कि कलीसिया में कहता है और आजकल सारा पादरी भी कहता है ये हम हैं। सारा पादरी कहता है ये हम हैं और सारे सिस्टर्स भी कहते हैं ये हम हैं। ये इसका मतलब क्या है? बोलता है कि देखो हम शादीशुदा हैं, हम शादी नहीं करते हैं, हम कुंवारी हैं, क्योंकि हम हैं ये 1,44,000 जो हम शादी नहीं करते हैं, हम औरत से हम अशुद्ध नहीं होते हैं। फादर लोग कहते हैं, सिस्टर लोग इधर नहीं, सिस्टर लोग एक और जगह है जो हम दूसरा कुरिन्थियों में बताते हैं, सिस्टर लोग उधर कहता है उधर। तो ये यहाँ तो देखता है ये पादरी लोग कहता है कि ये हमारे लिए है, इसलिए पादरी लोग एक वाचा भी बांधता है, इसका नाम है वाउ ऑफ चैस्टिटी। वाउ ऑफ चैस्टिटी का मतलब है कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि हम कुंवारी, क्योंकि वचन में कहता है ये रोमन कैथोलिक के पादरी कहता है ये बात। तो रोमन कैथोलिक पादरी कहता है कि हम शादी नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये 1,44,000 जो कुंवारी हैं, जो हम औरतों से अशुद्ध नहीं होते हैं। क्या ये कलीसिया की बात है? क्या कलीसिया शादी नहीं करना है? क्या कलीसिया में शादी अशुद्ध है? वचन में पढ़ लो हिब्रानियों 13वां अध्याय 4वां वचन। हिब्रानियों 13:4 याद में रखना है कि ये वचन जो अभी हमने पढ़ा है औरतों के बारे में, ये है प्रकाशित वाक्य का वचन है। प्रकाशित वाक्य का किताब है चिन्ह का, भाषा का किताब है। तो चिन का भाषा में हम अगर हम सरल ले जाता है तो हम गलत हो जाता है।
विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे।
देखो विवाह विवाह तो अशुद्ध में है और विवाह का बिछोना भी अशुद्ध नहीं है।
तेरह का चार और विवाह बिछोना निष्क्रह
बस तो बहुत साफ तरीके से वचन से कहता है कि परमेश्वर के योजना के अनुसार विवाह पवित्र है और विवाह के अंदर बिछोना पवित्र है। बहुत साफ है परमेश्वर के वचन बहुत साफ बताता है ये बात। तो कलीसिया के अंदर शादी कोई ऐसा अशुद्ध बात नहीं है। आपको याद होगा कि प्रभु के 12 चेलों में एक शादीशुदा चेला था पतरस, और उसके घर में जब प्रभु गया उसके बीवी की माँ बीमार थी और प्रभु ने उसको छुया और उसको ब्रूफन नहीं
बहुत बड़ा सबूत है।
ये वचन हम पढ़ते हैं मत्ती के किताब 8:14-15 कि प्रभु जब अंदर आया सास को बहुत बुखार था ब्रूफन लिया ना मत्ती में 8:14-15 मत्ती में 8:14-15
यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को जल में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ धोया और उसका जल उतर गया, वह उठकर उसकी सेवा करने लगा।
तो तुरंत चंगा हो गया उसके सास और उसके बाद सेवा भी किया। तो यहाँ तो देखता है कि उसी वक्त पतरस भी शादीशुदा था, बीवी भी था, बच्चे भी थे। बिल्कुल। तो कलीसिया के अंदर शादी कोई बुरे बात नहीं है, बल्कि शादी एक पवित्र बात है, क्योंकि शादी में पैदा होता है बच्चे, और बच्चे पैदा होना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। बच्चों को बड़ा करना एक बहुत बड़ा ऑनर आदर है जो परमेश्वर देता है, मतलब ये सृष्टि करने की काम देता। तो ये बात जाते जाते कलीसिया के अंदर ये गलत शिक्षा आया कि शादी नहीं करना, शादी मना है। वचन में हम पढ़ता है कि एक बिशप जो एक क्या कहता है बिशप को, वचन में पढ़ो 1 तिमोथियस 3:2
ये बात सत्य है कि जो
अध्यक्ष को बिशप कहता है,
अध्यक्ष होना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति।
देखो एक अध्यक्ष को शादी है बहुत आवश्यक है। बस। तो अध्यक्ष को शादी करना बहुत अवश्य है, लेकिन आजकल एक भी अध्यक्ष ऐसा नहीं करता। क्यों? सुनते हैं अध्यक्ष को शादी करना मना है। ये कौन सा कानून है? ये वचन का कानून नहीं है। इसलिए आजकल सुनता है बहुत बुरे बुरे बात है आजकल के अध्यक्षों के बारे में, बच्चों के क्या क्या की करते रहते हैं, ये जो 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 बहुत बुरा है, जो बहुत अपमान वाले बात है। लेकिन वचन साफ कहता है कि अध्यक्ष एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए। तो शादी कोई अशुद्ध बात नहीं है कलीसिया में, और ना ही ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 14वां वचन ये 144,000 वो है जो औरतों के साथ अशुद्ध नहीं बन गया। तो अगर ये कलीसिया का स्थिति असली में है तो हमारा बहन नहीं बैठना इधर, ये सिर्फ भाइयों के बारे में कहा गया है। क्योंकि अगर ये बहन भी इधर है ना है होना है तो कहना है कि ये वे है जो औरतों के साथ और मर्दों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ। ये सिर्फ औरतों के साथ कहा है और शादी अशुद्ध नहीं है और शादी का संबंध भी अशुद्ध नहीं है। तो औरत चिन्ह के भाषा में असली औरत नहीं है, ये चिन्ह के भाषा में ये औरत कुछ और है, हम समझना है। ये 144,000 कोई औरतों के साथ अशुद्ध नहीं होता है, ये 144,000 कुआरियां होते हैं। ये बात तो बाद में हम पढ़ लेंगे लेकिन वचन में पढ़ लेंगे कि अभी कलीसिया में भाइयों भी होता है और बहनों भी होता है। वचन में पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 17:17-18
इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें घृणा करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे।
तुम मेरा बेटा और बेटियां, देखो बेटा और बेटियां। ज्यादातर परमेश्वर हमारे को देखते वक्त हमारे को मानसिक शरीर के नजर में नहीं देखता है, हमारे को सिर्फ दिल के नजर में देखता है, मन के नजर में देखता है। और ये मन में ना उनके पास आदमी है ना या औरत है, लेकिन जब शरीर देखता है फर्क है आदमी है और औरत। इसलिए भाइयों और बेटियों बेटों और बेटियों इधर है, तो ये बात आप याद में रख लीजिए। तो ये भी यहाँ तो 144,000 ये औरतों के साथ अशुद्ध नहीं होता है, ये कुंवारियों है, ये तो शादी की बात नहीं है, ये तो सरल बात नहीं है, ये तो मनुष्य के शादी के बारे में नहीं कह दिया है, ये तो कोई और बात है। ये औरतों भी शारीरिक औरतों नहीं है, कोई दूसरे औरतों की बात दिया गया है। अभी ये 144,000 के बारे में वचन में आगे पढ़ते हैं, ये प्रकाशित वाक्य 14:4 प्रकाशित वाक्य 14:4 आगे पढ़ो।
ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वही हैं कि जहाँ कोई मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं।
जहाँ मेमना जाता है पीछे हो लेते हैं, और
ये तो परमेश्वर के लिए पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से वो लिए गए हैं।
पहला फल मनुष्य में से पहला फल, आपको जानता है ना फसल में पूरा खेत का फसल होता है, लेकिन पूरा खेत के फसल में से एक पहला फल लेते हैं एक कटोरे में एक एक प्लेट में, है ना। और वो पहला फल सबसे उत्तम फल, उतना ढेर सारे फसल में से सबसे उत्तम फल लेता है। उत्तम दो चीज देखता है वो, उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होना चाहिए और उसका खुशबू बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, है ना, उत्तम फल। तो उस तरीके से यहां भी देखता है तो परमेश्वर बताता है उनके सारे मनुष्य जाति में से पहला फल ये 144,000 है। पहला फल का मतलब क्या है, दो उत्तम चीज होगा इनके पास, दो उत्तम चीज, पहला उनके स्वभाव कैरेक्टर और दूसरा उनके आज्ञा पालन ओबीडियंस। ये दोनों चीज जो है इनमें बहुत उत्तम किस्म का है, उत्तम किस्म का स्वभाव और उत्तम किस्म का आज्ञा पालन। इसके वास्ते ये मनुष्य जाति में से पहला फल है। उनको चीज मिलता है, एक तो मिलता है एक मुकुट, वचन में पड़ता है प्रकाशित वाक्य 3:11, वचन पड़ता है 3:11, उनको मिलता है एक मुकुट, प्रकाशित वाक्य 3:11,
मैं शीघ्री आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले।
हाँ, उस मुकुट मिलेगा। और दूसरा उसको मिलता है एक मौका प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन में बैठने के लिए, वो प्रकाशित वाक्य 3:21, प्रकाशित वाक्य
3:21, उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया।
तो ये झुंड को दो चीज मिलता है, एक तो सर पर मुकुट और दूसरा सिंहासन पे बैठने का मौका। तो ये था 1,44,000
ये था 1,44,000,
ये था असली वफादार कलीसिया महिमा में। लेकिन मैंने बोला ना, ये छोटा बक्सा एन के नीचे एक बड़ा बक्सा है। मैंने बोला वफादार को छोड़ के वफादारी कम भी है,
कम वफादार,
बेवफा नहीं, वफादार से कम है। ये वफादार के कम के झुंड को क्या मिलेगा? अनंत जीवन, अनंत जीवन। ये वफादार के कम का झुंड के बारे में अभी पढ़ लेंगे वचन, प्रकाशित वाक्य 7:9, प्रकाशित वाक्य 7:9, ये बाद में लेंगे।
इसके बाद मैं,
इसके बाद
इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोक और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है।
देखो ये एक ऐसा झुंड है जो स्वर्ग में है, क्योंकि सिंहासन के सामने और मेमना के सामने, ये एक स्वर्गीय झुंड है। लेकिन ये झुंड बारे में अच्छे ध्यान से देख लो, इनका संख्या अनगिनत है, अनगिनत है, लेकिन उसका संख्या 1,44,000। तो 1,44,000 अलग और अनगिनत झुंड अलग। वो झुंड जो छोटा झुंड है 1,44,000, वो उसके बारे में हम चार बात देखते हैं। पहला बात, वो सिंहासन पर बैठता है, ये लोग सिंहासन के सामने खड़ता है, वो लोग बैठते हैं, ये लोग खड़ते हैं, वो लोग के मुकुट पर एक सर पर मुकुट है, इन लोगों के हाथ में खजूर के डालियां हैं, ये लोगों के हाथ में खजूर के डालियां हैं। तो देखो इतना फर्क है, वो लोगों के सर पर मुकुट है, इन लोगों के हाथ पर में खजूर के डालियां हैं, वो लोगों मेमना के सामने करते हैं, सॉरी वो लोगों सिंहासन पर बैठते हैं, मेमना के पास बैठते हैं, और ये लोग सिंहासन के सामने करते हैं, वो लोग बैठा रहते हैं, ये लोग खड़े रहते हैं, वो लोग मेमने के पास बैठे हैं, ये लोग मेमने के सामने है। तो बहुत सारा फर्क है, चार फर्क है। इधर से मालूम हो गया है वो झुंड अलग और ये झुंड अलग। तो वो 1,44,000 है, ये तो अनगिनत है। ये दूसरा झुंड है जिनको अनंत जीवन पाएगा। ये झुंड बांटता है वो इनाम के लिए, लेकिन इनाम प्राप्त नहीं करता है। किस कारण से इनाम प्राप्त नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, वो सारा जानकारी ब्रदर जी अगले क्लास में आपको दे देंगे। आज तो हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के बहुत एक गहरे सच्चाई हमने देखा है, बहुत सारे बातों हमने सुन लिया है, शायद ये आपके लिए बहुत आशीर्वादित होंगे। परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह के जरिए से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करे। आमीन।
तो मसीह में